Hare Krishna. So, Adik Mas is Lakshmi. Sabhi Bhaktos Ka Is Shyam Ki Bhagavat Shrimad Bhagavatam Katha Shravan Mein Swagat Hai. Jaise Kal His Grace Vishwarupa Prabhu Ne Bahut Hi Sundar Tarike Se Ati Mithas Ke Saath अधिक मास का महिमा आप सबके बीच में रखा, तो आज से हम शुरुआत करते हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में। भीष्म पितामह और परीक्षित महाराज के जीवन के बारे में। ओम अज्ञान निरंतस्य ज्ञानोज्ज्वलाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सर्वनारघुनाथं नितं तं सजीवम् सार्वैतं सार्वभूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपदामस्मरणान्विता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिभिः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
उपस्थित सभी वैष्णवों की कृपा की इच्छा के साथ आज की इस कथा की थोड़ी सी चर्चा करने की शुरुआत करता हूँ। भीष्म पितामह के कथा के बारे में जब हम शुरुआत करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि वे एक महाजन हैं। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के एक प्रवचन में कहते हैं कि महात्मा उसे कहते हैं जो श्री कृष्ण को पूर्ण तरीके से जानते हैं। भीष्म पितामह जो है वो श्री कृष्ण को पूर्ण तरीके से वे जानते थे। वे कुरु साम्राज्य के एक प्रपितामह थे। और यह जो कथा की शुरुआत होती है श्रीमद् भागवतम में, वो कथा की शुरुआत होती है कि युद्ध अब खत्म हो चुका है, पांडव युद्ध जीत चुके हैं, भीष्म पितामह बाण शैया पर लेटे हुए हैं और जैसे हम जानते हैं उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। और आज पहली बार युद्ध के बाद सारे पांच पांडव श्री कृष्ण के साथ पितामह जो मृत्युशैया पर है उन्हें मिलने के लिए अब जा रहे हैं। जब कोई बीमार होता है या कोई मृत्यु के समीप होता है तब उन्हें मिलने जाने की एक पर्टिकुलर एक जात की खास रस्म होती है जिसमें हम ज्यादा अच्छे कपड़े पहनकर नहीं जाते हैं, सादा ही रोज जाते हैं, क्योंकि बीमारी और मृत्यु यह एक बहुत ही गंभीर प्रसंग होता है। लेकिन आश्चर्य श्री कृष्ण सारे पांडवों को, पांचों पांडवों को कहते हैं कि आप जो है आपके सर्वोत्तम कपड़े गहने ये सब पहनकर आज आप सभी लोग पितामह से मिलने के लिए आइए। कृष्ण ये जानते थे कि पितामह भीष्म पांडवों के जन्म के समय से हमेशा उन्हें आनंदित, उन्हें सुखी देखना चाहते थे और इसी की वजह से आज ऐसा मृत्यु समय होने के बावजूद भी पितामह के सामने सारे पांडव आज अपने सर्वोत्तम आभूषण के साथ वे आज पितामह के सामने आते हैं। जब कृष्ण सबसे पहले युद्ध भूमि पर पितामह के सामने आते हैं तब कृष्ण सबसे पहले पितामह के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं। वैष्णव आचार संहिता ये बहुत ही गहन विषय है और श्री कृष्ण और उनके जो शुद्ध भक्त हैं ये हमें दिखाते हैं किस प्रकार से वैष्णव आचार संहिता होनी चाहिए। कृष्ण एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हुए भी अपने प्रिय भक्त, लेकिन जो उनसे वय में ज्यादा बड़े हैं, उनके सामने वे पहले अपना सर अपना नमन करते हैं। उनके प्रिय पांडवों के सामने भी कृष्ण हमेशा, युधिष्ठिर के सामने हमेशा अपना सर नमाते थे, भीम के सामने अपना सर नमाते थे और अर्जुन को एक मित्र के समान और सहदेव और नकुल को छोटे भाइयों के समान समझते थे। तो जब हम वैष्णव बनते हैं, जब हम कोशिश करते हैं वैष्णव बनने की, तब यह आचार संहिता हमारे जीवन का एक अंग, विभिन्न अंग हो जाना चाहिए। किस प्रकार से हर व्यक्ति को सम्मान देना, यह वैष्णव का आचार्य, वैष्णव की बिहेवियर का एक मूलभूत अंग होता है। और इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि श्री कृष्ण कितनी बार, हम देखते हैं कि किस प्रकार से वे सुदामा का स्वागत करते हैं, गरीब ब्राह्मण सुदामा का, किस प्रकार से रुक्मिणी देवी के ब्राह्मण जो मैसेंजर है, एक संदेश वाहक है, उनका स्वागत किस प्रकार से करते हैं। और इस प्रकार से जब भीष्म के देव के सामने पूरी सैन्य के साथ सारे पांडव जो हमारे वहां पर आते हैं, तब पांडव के साथ सिर्फ कृष्ण ही नहीं है, भीष्म पितामह एक ऐसी प्रख्यात व्यक्ति थी कि जिनकी ख्याति सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं है लेकिन सारे त्रिलोक में फैल चुकी हुई थी। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं उनके परपोट में कि सारे त्रिलोक में ये बात फैल चुकी थी और अनेक देवता और बाकी अगर अलग अलग लोगों के लोग वहां पर इस महान प्रसंग को, कि भीष्म पितामह अपना शरीर छोड़ने वाले, इस प्रसंग को देखने के लिए वहां पर आए थे। राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, ऐसे अनेक अनेक महान हस्तियां वहां पर थी, नारद मुनि, पर्वतमुनि जैसे देवर्षि थे, अनेक परीक्षित महाराज जैसे वहां पर राजर्षि थे, व्यास देव थे। और इस प्रकार से ये सारी जो जगह थी वो अनेक अनेक महान देवता और लोगों से वहां पर ये जगह घेर चुके थे पितामह के आज पर। पितामह के सामने जब पांडव आते हैं तब पितामह की आंखों में अश्रु आ जाते हैं और वे अश्रु के साथ अपने शब्द उचारते हैं। अभी हमने वैष्णव आचार संहिता के बारे में बताया। भीष्म पितामह जो एक पूरे राज्य के एक वडिल थे, सर्वोत्तम वडिल थे, जैसे हम जाते हैं कि एक घर के, एक संस्था के जो मुख्य जो व्यक्ति होती है उसकी कई सारी जवाबदारी होती है और किस प्रकार से मेहमान का स्वागत करना यह घर के या संस्था के प्रमुख का एक मुख्य कर्तव्य रहता है। और वही विश्व पितामह आज बाणशैया पर सोते हुए भी जब कृष्ण और पांडव उनके सामने आते हैं तब वे उस स्थिति में नहीं है कि वे उनसे खड़े होकर उनका पूरी उनकी जिस प्रकार से स्वागत करनी चाहिए उस प्रकार से स्वागत कर सके। लेकिन बाणशैया पर होते हुए भी श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन ये बाणशैया पर एक एक बाण जो उनके शरीर पर जो लगा हुआ था उसका दुख जो दर्द जो था वो दर्द उतना ही था। और इतनी दर्दहीन दर्दहीन स्थिति में रहते हुए भी पितामह ने पांडवों का और कृष्ण का कैसे स्वागत किया? नहीं वे हाथ से हला सकते थे, नहीं वे खड़े हो सकते थे, लेकिन फिर भी उनके पास जो भी था उससे उन्होंने श्री कृष्ण का स्वागत किया। और उसके पास क्या था? उनके पास थे शब्द, पूरे हृदय के साथ उन्हें मिठास भरे शब्दों के साथ मेहमानों का स्वागत किया। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि जब एक वैष्णव के घर पे कोई अतिथि या मेहमान आता है तब कम से कम उसे उस अतिथि से अच्छी बैठने की जगह, आसन, मीठे शब्द, मुख पर सुंदर हास्य और कम से कम शीतल जल से तो स्वागत करना ही चाहिए। हमारे शास्त्रों में अनेकों अनेक ऐसी कथाएं हैं जहां पर एक वैष्णव किस प्रकार से अतिथि को अपना स्वागत करता है। और यहां पर पितामह ऐसी स्थिति में होते हुए भी हृदय पूर्वक पांडवों का स्वागत करते हैं। हम देखते हैं हमारे जीवन में भी वैष्णव समुदाय के बीच में रहना कितना भाग्य है। थोड़ी समय पहले भक्तिदान अस्पताल में रोनी कनायक प्रभु करके एक ब्रह्मचारी प्रभु अपने जीवन के अंतिम स्तर पर कैंसर से पूरी तरह से शैयावश थे और अब थोड़े ही दिन बाकी थे उनके शरीर छोड़ने के, और तब हरग्रेस यमुना माता जी उनको मिलने के लिए आए। प्रभु जी के पास सांस लेना भी कठिन था, उनके पास पूरी शुद्धि भी नहीं थी, कैंसर सारे शरीर में फैल चुका था। और ऐसी स्थिति में भी जब यमुना माता जी उनके पास आए ये बहुत ही विचलित हो चुके थे। और तब यमुना माता जी जाने के बाद में समझ में आया था कि वो कह रहे थे कि मेरे कपड़े जरा ठीक तरीके से रखिए, माता मेरे सामान आई है और उनके सामने मुझे ठीक तरीके से उसे पेश आना जरूरी है। एक और माता जी यहाँ पर बेलगांव से एक माता जी थी, उनको भी ब्रेलाव का लंग का कैंसर था और लास्ट स्टेज में भी थी यहाँ पर। और जब वे लास्ट स्टेज में थी तभी इतनी दर्द ना उनकी परिस्थिति थी कि एक सांस भी लेना उनके लिए मुश्किल था, आंखों की पापन भी खोलना उनके लिए मुश्किल था। अंजनी प्रिया माता जी का नाम था। और जब हम थोड़े वैष्णव के साथ हम उनको जब मिलने के लिए गए तब उन्होंने अति कठिनाइयों से आंख खोली और कहा बैठिए बैठिए। यह एक वैष्णव आचार संहिता होती है कि शरीर की या मानसिक कितनी भी कठिनाई क्या ना हो, लेकिन जब एक वैष्णव हमारे बीच में जब आता है, हमारे पास जब आता है, तब उसका उनका हृदय पूर्वक स्वागत करना ये बहुत ही महत्व का हमारे लिए, हमारे भक्ति का, हमारे आचार संहिता का एक हिस्सा हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भीष्म पितामह श्री कृष्ण को आज उनके सामने खड़े हुए देखते हैं। श्रील प्रभुपाद उस श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं कि श्री कृष्ण के दर्शन उनकी अंतरंग शक्ति की कृपा के बिगर हो ही नहीं सकता है, और यह अंतरंग शक्ति की कृपा उनके भक्तों के लिए सहजता पूर्वक उपलब्ध होती है। और भीष्म पितामह जो भगवान श्री कृष्ण के एक अति प्रिय भक्त थे, क्योंकि उनकी भक्ति ये भगवान को बहुत ही प्रिय थी, और इस भक्ति के वजह से भगवान श्री कृष्ण आज विश्व पितामह के सामने खड़े थे। भगवान को देखने के लिए और कोई भी, भगवान के दर्शन के लिए और कोई भी चीज काम में नहीं आती। ये भौतिक जगत में हम अलग अलग चीजों को पाने के लिए अलग अलग प्रकार के नुस्खे, तरीके, शॉर्टकट अपना सकते हैं, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए शुद्ध भक्ति के सिवाय और कुछ भी भगवान को नहीं बुला सकता है। कृष्ण को पांडवों को देखते ही पितामह आंखों में अश्रु के साथ शब्द उच्चारण करते हैं। एक महाजन को किस प्रकार से परिस्थिति में कैसे पेश आना यह पूरी तरह से पता चलता है। पितामह ये जान चुके थे कि युधिष्ठिर के हृदय में अति घनी ग्लानी थी, क्योंकि युद्ध में इतना सारा संहार हो चुका था और इस संहार के वजह से युधिष्ठिर महाराज के हृदय में बहुत ही तीव्र पीड़ा हो रही थी, संकोच हो रहा था कि इतने सारों लोगों की हत्या मेरे वजह से हो चुकी है। और पितामह ये जान चुके थे कि भीष्म पितामह की और युधिष्ठिर महाराज की ये ग्लानी क्यों है, और इसी वजह से एक महाजन को जिस तरह से पेश आना चाहिए उसी तरह से पितामह अपने शब्दों की शुरुआत करते हैं आंखों में अश्रु के साथ। और वे कहते हैं किस प्रकार से सारे पांडव, कितनी सारी अनेकों अनेक कठिनाई, अनेकों अनेक दुख में से कैसे वे पार हो चुके, और ऐसी कठिनाइयां, विश्व पितामह कहते हैं कि ऐसी कठिनाइयां मानो उस कठिनाइयों से जीवित बाहर निकलना संपूर्णतः असंभव है। बलि महाराज की कथा में विश्व प्रभुपाद इस प्रकार से लिखते हैं कि बलि महाराज इतनी कठिनाइयों से जब निकले थे कि कोई और व्यक्ति अगर बलि महाराज की जगह पर होता तो उन्होंने उस ह्यूमिलिएशन में, उस मानहानि के समय में अपना शरीर त्याग कर दिया होता। सो भक्त जो होता है ये हमेशा अपनी कठिनाइयों में भी हमेशा भगवान को अपना आश्रय रखता है। और वहां पर पितामह बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि ये जो पांडव जो थे उन्हें चिंता की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, कठिनाइयां चाहे कितनी भी हो, लेकिन भक्त जब भगवान श्री कृष्ण धर्म का जब आश्रय लेता है तब उसे डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कई बार भक्त के जीवन में जो कोई घटनाएं बनती है उसके लिए उस भक्त के पास कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी सुझाव उसके पास नहीं रहता। पांडवों के पास क्या क्या नहीं था, पितामह कहते हैं युधिष्ठिर महाराज के रूप में धर्मराज खुद थे, सत्कार्य था, सामर्थ्य था, अस्त्र थी, शक्ति थी, सुशासन भी था, और भगवान श्री कृष्ण खुद उनके साथ थे। इतनी सारी चीजें पांच पांडवों के पास होते हुए भी इनको इतनी कठिनाइयों से क्यों जाना पड़ा? कई बार हम ये सोचते हैं हमारे जीवन में भक्ति में आने के बाद भी कई बार मन जो है इस प्रकार की सोच लाता है, इतनी कठिनाइयां मुझे ही क्यों, क्यों? ये प्रश्न हम खुद से कई बार, सबके सामने नहीं लेकिन अकेले में कई बार ये प्रश्न हम पूछते हैं, पूछ बैठते हैं। और यहाँ पर पितामह कहते हैं कि पांडवों को ये तकलीफों से जाना पड़ा नहीं, सिर्फ एक ही कारण था, क्यों? कृष्ण की यह इच्छा। कृष्ण की क्या इच्छा थी? यह इच्छा थी कि धर्म का हमेशा विजय हो, कॉन्क्वेस्ट ऑफ वर्च्यू, श्री प्रभुपाद लिखते हैं, टू एस्टैब्लिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ वर्च्यू। दैट इज व्हाई ये सारे जो भक्त हैं इसी की वजह से धर्म की संस्थापना होने के वजह से होनी चाहिए थी, इसके वजह से ये सारे जो उनके जो भक्त जो हैं वो इतनी सारी कठिनाइयों से निकले उनके जान पड़ा। श्री प्रभुपाद बहुत सुंदर यहां पर एक मीठा उदाहरण देते हैं, कहते हैं जिस प्रकार से एक घर में नई नवेली बहू आती है और सासू जी को उस नई नवेली बहू को कुछ सिखाना होता है, घर के जब बहू आती है ससुराल तब नए घर के नए रीति रिसम होते हैं, तो नई बहू कई बार उस रीति रिस्मों से जानकारी उसको नहीं होती है, तब उस नई बहू को सिखाने के लिए सासू क्या कहती है, अपनी जो बेटी होती है उसे कहती है बेटी इस प्रकार से ये कर, बेटी इसे इस प्रकार से रख, बेटी यह चीज यहां पर इस प्रकार से रखना चाहिए। तो यह बहू जब देखती है सुनती है कि अपनी जो देरानी है उसको इस प्रकार से सासू माँ कहती है, तो उसका मतलब यह होता है कि सासू माँ अपनी नई बहू को सिखाना चाहती है अपनी बेटी को सिख देकर। उसी प्रकार से श्री प्रभुपाद कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने भक्तों को उनके जवान जीवन में इतनी सारी कठिनाइयां, इतनी सारे ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस मुश्किलियां भेजते हैं ताकि सारे समाज के लिए, आने वाले सारे समाज के लिए जो शिक्षाएं जो है उन भक्तों के द्वारा जन समाज के सामने वो शिक्षाएं रखी जाए। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि यह जो ट्रायल्स जो है, ये जो मुश्किलियां हैं, ये भक्तों के लिए एक कृपा के समान है, एक बेनिडिक्शन है, और उस कठिनाइयां भक्त के जीवन में जो कठिनाइयां आती है और भगवान की जो कृपा है, इस बीच में कोई फर्क नहीं रहता है। बहुत सुंदर ये वाक्य है कि भगवान की कृपा और भक्त में के जीवन में आती हुई कठिनाइयां, ये दोनों एक ही चीज है, भक्त ये दोनों चीजों को कभी भी अलग नहीं समझता है। देखते हैं अनेकों अनेक भक्तों के जीवन देखते हैं, विदुर महाराज जब उनको कुरुक्षेत्र, उनको जब अपने राज्य से बाहर फेंका जाता है, दुर्योधन कहता है कि उन्हें इस शरीर को छोड़कर चार, उनके सिर्फ उनको चार दिशाओं पहनाकर उनको घर से निकाल दीजिए। जिस घर में, जिस राज्य में विदुर महाराज ने अपना सारा जीवन उस राज्य को बचाने के लिए रख दिया था, उन्हें इस प्रकार से वहां से निकाल दिया जाता है। और तब महात्मा विदुर ये जानते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण का ही ये एक उनकी कृपा का ही एक अंग है। भक्त जो है, शुद्ध भक्त वह है जो अंतर्गत भगवान की अंतरंग शक्ति के नीचे, उसके कृपा के नीचे जब रहता है, तो जीवन में जो कठिनाई आती है उसे भक्त हमेशा भगवान की कृपा समझता है। इस प्रकार से कथा आगे चलती है और फिर विश्व पितामह श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। अति सुंदर शब्दों में यह स्तुति है। पितामह कहते हैं कृष्ण आप सबसे पहले नारायण हैं, ओरिजिनल नारायण, जो सारे जो नारायण हैं उसके आप मूल हैं। और प्रभुपाद कहते हैं, श्री प्रभुपाद कहते हैं जब विश्व पितामह यह कहते हैं कि श्री कृष्ण आप नारायण के, सारे नारायण के मूल नारायण हैं, तो यह एक महाजन के मुख से जब ये शब्द निकलते हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व रहता है। और फिर कृष्ण पितामह अति भाव से कहते हैं कि यही कृष्ण जो है जिन्होंने अनेकों अनेक मुश्किलियां इस पांडवों को सहन करने में उनको सहनशीलता, ये जो कृष्ण के वजह से ही जो सारी जो तकलीफ होते थे, ये भगवान की वजह से ही ये सारी मुश्किलें ये पास उसे पार कर सके। और फिर कृष्ण कहते हैं हे कृष्ण आप इन पांडवों के एक घर के सदस्य के समान थे, एक कजिन, एक चचेरे के समान, एक मित्र के समान, एक सहृदयी उनके एक स्वजन के समान आप रहे थे। कभी कभी आप उनके गाइड भी रहे, कभी कभी आप उनके संदेश वाहक भी रहे, और हर वक्त आप उनके एक शुभ चिंतन के रूप में आप उनके साथ रहे। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण पांडवों के इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के संबंधों में उनके साथ रहे हैं, लेकिन कृष्ण जिस प्रकार से सूर्य और सूर्य के किरणों में कोई फर्क नहीं रहता है, उसी प्रकार से कृष्ण ये हर समय पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण ही रहे। श्री प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि अर्जुन के सारथी के रूप में कृष्ण अगर एक सारथी भी बने हैं तो उसमें कौन सी नवाई है। क्यों? क्योंकि श्री प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण हर जीव के साथ उनके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, और एक परमात्मा के रूप में कृष्ण हर जीव का रथ जो है वह भगवत धाम की ओर ले जाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। कृष्ण अगर पांडवों की राजसूय यज्ञ में अगर सबकी सभी मेहमानों की जो खाकर छोटी हुई जो पत्तल थे वो कृष्ण उठा रहे थे, तो उसमें कौन सी नवाई है? क्योंकि वही कृष्ण जो है वो हर जीव के हृदय में नाम के रूप में आकर हर जीव के हृदय की मलिनता को हर वक्त उसे स्वच्छ करने के लिए कृष्ण हमेशा उत्सुक रहते हैं। और इस प्रकार से जिस तरह से सूर्य जो होता है वो मल को सुखा देता है, तो उससे सूर्य जो है मलिन नहीं हो जाता है, और उस प्रकार से कृष्ण हर स्थिति में हर परिस्थिति में कृष्ण जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण उसके रूप में रहते हैं। और फिर कृष्ण भगवान कृष्ण को भीष्म पितामह एक सुंदर शब्दों से उन्हें नवाजते हैं। कृष्ण कहते हैं हे विजय सखा, या तो हे पार्थ सखे। यहां पर कृष्ण को सिर्फ कृष्ण पितामह नहीं कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं हे विजय सखे, हे पार्थ सखे। तो यहां श्री प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि कृष्ण को हमेशा यशोदा नंदन या तो नंद नंदन, इस प्रकार से जब कृष्ण से संबोधन किया जाता है तब श्री कृष्ण को यह संबोधन बहुत ही मीठा बहुत ही प्यारा लगता है। और इसी के वजह से एक महाजन के रूप में भीष्म पितामह जी जानते हैं, और इसी के वजह से कृष्ण के पहले कृष्ण के प्रिय भक्त जो है उनका नाम जब लेते हैं तब कृष्ण उसे बहुत ही प्यारा समझते हैं। और श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि शरीर के संबंध के साथ यह जो भगवान श्री कृष्ण जो उनको जो भगवान श्री कृष्ण अपने संबंधितों के साथ अपने प्रिय भक्तों के साथ जब नाम लिया जाता है तो यह भगवान का प्रेम का आदान प्रदान का एक सर्वोच्चम उदाहरण है कि भगवान अपने भक्त को कितना प्रेम करते हैं। इसका यह सर्वोत्तम यह उदाहरण है कि कृष्ण अपने पहले अपने प्रिय भक्तों का नाम लगाना बहुत ही उनको अच्छा लगता है। और उस समय जब भीष्म पितामह के सामने जब कृष्ण उनके सामने जब रहते हैं तब सारा जीवन जिस व्यक्ति ने एक राजनीतिज्ञ एक प्रपितामह एक वीर योद्धा उस रूप में सारा जीवन जिस व्यक्ति ने बिताया है उनके सामने अंत समय में कृष्ण कैसे आ सकते हैं, आगे के पन्नों में ये हमें पता चलता है। पितामह कहते हैं पूरी नम्रता के साथ कि इस शरीर के छूटने के बाद मैं कहां जाऊंगा ये मुझे पता नहीं, यद्यपि ये सच्चाई है हर वैष्णव वहां पर जो हाजिर था हर वैष्णव को यह पता था कि पितामह इस शरीर के छूटने के बाद भगवान के साथ श्री कृष्ण के साथ उनके आध्यात्मिक धाम में अनंत काल तक उनके साथ रहने वाले हैं। लेकिन नम्रता ये हर भक्त का एक बहुत ही महत्व का अंग है। श्रीमद् भागवतम में श्री प्रभुपाद एक जगह पर लिखते हैं जिस प्रकार से एक फूल के ऊपर एक भौरा बैठता है तो वह फूल उस भौरे के वजन से एक दिशा में ढल जाता है। उसी प्रकार से नम्र भक्त के, और जब भक्त नम्र होता है तब उसी भक्त के पास कृष्ण का नैसर्गिक हित से झुकाव होता है। A humble devotee, कृष्णा हैज अ टिल्ट, श्री प्रभुपाद वहां पर शब्द लिखते हैं कि भक्त की ओर, नम्र भक्त की ओर भगवान हमेशा उसकी ओर नैसर्गिक रूप से उनकी ओर झुके रहते हैं। और यहाँ पर पितामह अपना नम्रता का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण लेते हैं। और फिर आगे श्री प्रभुपाद लिखते हैं किस प्रकार से विश्व पितामह कृष्ण के रूप का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि हे कृष्ण, आपका चेहरा कितना प्रसन्नता से भरा हुआ है, आपके चेहरे पर सुंदर ये हास्य, आपकी आंखें मानो सवेरे का सूर्य जब उगता उगने की शुरुआत होते हैं, वो जो कुमाश भरी लाश बहुत ही नाजुकता उस लालाश में रहती है सवेरे के सूर्य की, उस लालाश आपकी आंखों में है, और आपका मुख जो है मुखामुज एक कमल के समान है, और यह मुख, यह सुंदर घनश्याम मुख हमेशा मैं इच्छा रखता हूं कि मेरे ध्यान पथ पर हमेशा रहे। कितना सुंदर ये वाक्य है, हमारे ध्यान भौतिक जगत में हमारा जो ध्यान पथ है वो कितनी सारी कंटक, पत्थर, खड्डे, अग्नि उसे भरा पड़ा देता है, लेकिन एक शुद्ध भक्त जो होता है वो अपने ध्यान पथ पर क्या चाहता है कि भगवान का ये जो सुंदर मुख जो है ये चतुर्भुज मुख जो है, चतुर्भुज स्वरूप है भगवान का है, उस इसे विश्व पितामह इच्छा रखते थे मेरे ध्यान पर मन पथ पर ये सुंदर मुख होना चाहिए। और फिर आगे विश्व पितामह के सामने जब सभी लोग बैठे हैं तब कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से पूछते हैं कि आप कृपया पितामह से कोई प्रश्न पूछिए। अब ये थोड़ी घटना आश्चर्यचकित हो जाते हैं भक्त लोग कि मृत्यु की शैया पर पितामह बैठे हैं, और मृत्यु शैया पर बैठे व्यक्ति को प्रश्न हम कैसे पूछ सकते हैं, इतनी पीड़ित अवस्था में है, इतनी अंत की स्थिति है। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण ये प्रूव करना चाहते हैं, ये सारे जग को ये बताना चाहते थे। क्या बताना चाहते थे? पहला, कृष्ण ये सारे जग को बताना चाहते हैं कि वे अपने भक्त जो है पितामह, भक्त विश्व पितामह जो है वो वहां पर अनेकों अनेक देवर्षि, राजर्षि, महर्षि वहां पर अनेकों अनेक लोग वहां पर थे, लेकिन उन सभी में मेरा भक्त जो है शुद्ध भक्त है, ये सर्वोत्तम है। पहली बात ये श्री कृष्ण पूर्वाद करना चाहते हैं। दूसरा, कृष्ण ये पूर्वाद करना चाहते थे कि मेरा भक्त कितनी भी मानसिक या शारीरिक कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन वह अपने मन और अपने आध्यात्मिकता के द्वारा उनकी मंद की सदृढ़ता जो है उसमें कोई भी कमी बना नहीं रहना चाहिए, नहीं रहता है, ये श्री कृष्ण पूर्वाद करना चाहते। और तीसरा, श्री कृष्ण सारे जग के सामने अपने शुद्ध भक्त जो है उनके गुणगान सबको, उनके जो ग्लोरीज है, उनके जो गुण है वो सारे जग के सामने रखना चाहते हैं। प्रभुपाद देखते हैं, श्री प्रभुपाद देखते हैं कि जिस प्रकार से एक पिता अपने बेटे के गुणगान गाने से, गुणगान देखने से ज्यादा आनंदित होते हैं, उसी प्रकार से कृष्ण अपने भक्त के, खुद के भक्त के जब गुणगान कृष्ण जब सुनते हैं तब उन्हें ज्यादा आनंद आता है। शास्त्रों में यहां तक लिखा है कि ऐसे भी भक्त जो है जो कृष्ण से वरदान लेते हैं कि मुझे आपसे ज्यादा गुणदान मिलना चाहिए, तो क्या ये भक्त अभिमानी है? नहीं, वो भक्त जानता है कि मेरे गुणगान से मेरे स्वामी को आनंद मिलता है, तो छो मेरे गुणगान गाए जाए। शिव जी ये वरदान लेते हैं कृष्ण से कि मेरे गुणगान आपसे ज्यादा होने चाहिए। क्यों? क्योंकि शिव जी जानते हैं कि मेरे गुणगान से कृष्ण को ज्यादा आनंद मिलता है, तो क्यों मैं सही, मेरे गुणगान ज्यादा होना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान और भक्त के बीच में एक प्रकार की एक कॉम्पिटिशन चलती है, कौन किसके गुणगान ज्यादा गा सकता है। और फिर युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह से अनेकों अंदर अनेक सुंदर प्रश्न पूछते हैं, और भीष्म पितामह इस स्थिति में रहकर भी अति सुंदरता से, अति गहनता से, अति स्वच्छता से सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं। वे एक मनुष्य, एक सज्जन व्यक्ति के लक्षण युधिष्ठिर महाराज से बताते हैं कि एक सज्जन व्यक्ति के लक्षण क्या होना चाहिए। एक तो कभी वो क्रोधित नहीं होता है, दूसरा वो झूठ नहीं बोलता है, तीसरा वो अपना जो मिलकत है सभी के बीच में पूरी इक्वली बराबर से वो बांटता है, वो हमेशा क्षमा देने में तैयार रहता है, पत्नी और अपनी पत्नी से अपने पुत्र को बच्चों का वो लालन पालन करता है, वो हमेशा स्वच्छता का आग्रही रहता है, स्वच्छता शरीर की और स्वच्छता मन की, और वो कभी भी किसी से दुश्मना और भाव से नहीं रहता है, सादाई से रहता है, और हमेशा अपने से कमजोर और अपने नीचे के व्यक्तियों को हमेशा वो उसे आश्रय देता है। उसके बाद में भीष्म पितामह, ये भागवतम है 506वें पन्ने पर है, भीष्म पितामह जब शरीर छोड़ते हैं। भक्तों से मेरी नम्र विनती है कि ये जो चैप्टर का ये जो हिस्सा है बहुत सुंदर है, हमें भी हमारे भक्ति में मदद रूप कई चीजें इसमें से, ये हमारे लिए चीजें रखी गई है। युधिष्ठिर महाराज ये चीजें इस कलयुग में आने वाले लोगों के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। आगे जात वर्ण और व्यक्ति के स्वभाव के ऊपर भीष्म पितामह बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। फिर दान धर्म, कैसे दान दिया जाता है, उसका सुंदर चर्चा है। राज धर्म, एक राजा के धर्म क्या होता है, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, और अंत में भगवत धर्म क्या है, उसके ऊपर भीष्म पितामह बहुत ही सुंदर तरीके से युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा देते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या होना चाहिए, एक क्षत्रिय का कर्तव्य क्या होना चाहिए, क्षत्रिय कभी भी भीख नहीं मांगता है, क्षत्रिय कभी भी अहिंसक नहीं होता है, वो बिना जरूरी की हिंसा नहीं करता है, बट वो अहिंसक वो कभी भी क्षत्रिय नहीं रह सकता है। एक राजा जो होता है उसके शरीर पर हमेशा युद्ध में घाव होने चाहिए, यानी राजा जो है वो हमेशा युद्ध में सबसे पहले होना चाहिए। एक किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटर को किस प्रकार से रहना चाहिए, इसके ऊपर सुंदर चर्चा भीष्म पितामह करते हैं। और ये जब सब चर्चाएं चल रही होती है, तब धीरे से सूर्य जो है वो दक्षिण की ओर सूर्य धीरे से आगे बढ़ता है, और यही जो समय है श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि महान योगी जो है ये यही समय चूज करते हैं शरीर को छोड़ने के लिए। और तब एक बहुत सुंदर शब्द संस्कृत में लिखा है, और मिलित भीष्म पितामह अपनी आंखें जो है पूरी बड़ी कर, अमिलित अक्षर का शब्द का अर्थ है बड़ी बड़ी आंखों से। ये बड़ी बड़ी आंखें शास्त्रों में कई बार हमें, लक्ष्मण जी जो है श्री राम की जब सेवा करते थे, नासिक में जब हम जाते हैं तो लक्ष्मण जी की मूर्ति है वहां पर, तो आंखें इतनी बड़ी है, क्यों? क्योंकि श्री राम की सेवा में उन्होंने कभी भी एक भी मिनट पे उन्होंने जो है निद्रा देव को अपने पास आने नहीं दिया। जगन्नाथ जी को हम जानते हैं, यहाँ पर हमारे सामने है बड़ी बड़ी आंखों के साथ बलराम जी, जगन्नाथ जी, सुभद्रा मैया, सारे भक्तों का सेवा जो है प्रेम से, आनंद से वो लेते रहते हैं। तो यहाँ पर भीष्म पितामह जो है वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के सामने वे अपनी आंखें रखते हैं, और फिर वे वे उनके दर्शन करने के लिए भी तैयार करते हैं, क्योंकि अब जो है वो समय आ गया है, शरीर छोड़ने का समय आ गया है, और उस समय विश्व पितामह भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किस प्रकार से करते हैं इसका बहुत सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवत में दिया गया है। और यहाँ पर विश्व पितामह कहते हैं कि अब मेरा समय आ गया है, इति मति रूप कल्पिता विष्णु वितुष्टा, इति मति यानी विश्व पितामह कहते हैं कि अब मेरी जो मति जो है, ये मति शब्द बहुत ही गहन है, श्रील प्रभुपाद उनका ट्रांसलेशन करते हैं मति शब्द का, जिसका अर्थ है थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग, इसका मतलब है सोचना मन के साथ, हृदय के साथ और शरीर के साथ हम जो भी कुछ करते हैं, ये सारी चीजें विश्व पिता कहते हैं कि अब मेरी सारी जो शक्ति जो है, मेरे शरीर में जो भी शक्ति है वह सोचना, भगवान के सामने उनका सोच, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में समझना और उनके बारे में इच्छा, ये मेरी सारी तीनों क्रियाएं हैं। अब मैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, तृष्णा के साथ उपकल्पिता, उपकल्पिता का अर्थ श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इन्वेस्ट, हम सभी लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, गृहस्थ लोग इन्वेस्ट करते हैं, यहां पर हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया है। शरीर जब छूटने वाला है तब कोई इन्वेस्टमेंट साथ में नहीं आता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट जिसमें हमने हमारा थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग, ये तीन चीजें जब हमने भगवान श्री कृष्ण के रूप में, उनकी सेवा में, गुरु के आदेश को पालन करने में, जब यह तीन चीजें हम लगा देते हैं तो वह एक मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम इन्वेस्टमेंट होता है। और इस प्रकार से विश्व पितामह कहते हैं कि अब मेरी ये सारी जो शक्तियां हैं वो मैं भगवान में लगा देना चाहता हूं। और फिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे सात्वत, सात्वत पुंगव, पुंगव ये शब्द का अर्थ है सर्वोत्तम, सात्वत का अर्थ है भक्त, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त है उसके सर्वोत्तम जो आकर्षण है ये सात्वत पुंगव, ये पुंगव शब्द कृष्ण के लिए बहुत बार वापरा गया है। जब श्री कृष्ण कालेवन की जब उनके दहन की लीला जब है, तब मुचुकुंद के सामने से जब आते हैं, तब मुचुकुंद श्री कृष्ण से सबसे पहले जब मिलते हैं, तब श्री कृष्ण से कहते हैं हे नर पुंगव, ओ बेस्ट अमंगस्ट द मेन, मनुष्यों में सर्वोत्तम आप कौन है, बिकॉज कृष्ण जो कारण कृष्ण जो है वो हर चीज में सर्वोत्तम है। तो यहां पर कृष्ण को सात्वत पुंगव नाम से विश्व पितामह कहते हैं, और ये कहते हैं कि अब मैं मेरी जो सारी जो शक्ति जो है वो मैं आपके अंदर में लगा देना चाहता हूं। और फिर वो कहते हैं कि हे कृष्ण, आप जो है आपके लिए ये सारा त्रिभुवन कमनम, ये सारा त्रिभुवन आपके सुंदर दर्शन की इच्छा से हमेशा आकर्षित रहता है। त्रिभुवन कमनम ये शब्द का है कि यू आर द मोस्ट, ये सारे त्रिभुवन में आपका जो तमाल वर्णीय रविकर गौरव आरंभरम, मीन्स आपने ये जो चमकती हुई जो आपका जो पीताम्बर है और उस पीताम्बर धारण करते हुए आपके तमाल के वृक्ष के समान आपका सुंदर जो चेहरा है और आपका ये जो सुंदर जो शरीर जो है ये सारे शरीर के ऊपर जिस प्रकार से ये जो सुंदर जो चंदन जो लगा हुआ है, ये चंदन इस सुंदर मोहित दर्शन के लिए सारा त्रिभुवन लालायित रहता है। देखिए भगवान श्री कृष्ण की ये पीले पीताम्बर की जो धोती है ये एक कई बार उसे बिजली की उपमा दी जाती है, कई बार उसे सूर्य की उपमा दी जाती है, लेकिन एक आकर्षित करने वाली बात यह है कि युद्ध महाराज परीक्षित जब मां के गर्भ में थे, तब मां के गर्भ में उन्होंने छोटे से अंगूठे के जितने श्री कृष्ण को देखा है, और वहां पर भी उन्होंने कृष्ण की पीली चमकती हुई धोती को देखा है। और जन्म के बाद कहीं पर भी छोटे परीक्षित चार पैर से चलते हुए कहीं पर भी देखते थे तो ये सोचते थे कहां है ये पीली धोती, कहां है पीली धोती, और कोई भी पीली चीज होती थी तो सोचते थे ये वही कृष्ण है, इसीलिए उनका नाम, ये परीक्षा देते थे इसके लिए उनका नाम परीक्षित रहा। और मृत्यु के समय अब भीष्म पितामह अब शरीर छोड़ के जाने की तैयार कर रहे हैं, और वे भी भगवान की ये सुंदर पितामह के बारे में ये चर्चा करते हैं। कृष्ण भावना जो है वो जीवन के हर पहलू में पूरी तरह कंप्लीट होता है। एक मां के गर्भ में बच्चा होता है और उस मां के गर्भ में बच्चा सातवें आठवें महीने में, कई बार हमने भक्तों के बीच में देखा है कि जब कीर्तन चालू होता है तब बच्चा मां के गर्भ में होते हुए भी जोरों जोरों से हाथ पैर हिलाता है। कृष्ण का नाम में ये शक्ति है कि बच्चा मां के गर्भ में तो भी वो कीर्तन उसे भगवान का नाम का कीर्तन उसे अच्छी तरह से आध्यात्मिक तरीके से असर करता है। और मृत्यु के समय भी कई बार ऐसे देखा गया है कि मृत्यु के समय ब्रेन पूरी तरह से दूषित डैमेज हो चुका है, शरीर का कोई भी अवयव व्यक्ति हिला नहीं सकती है, कौन है आजू बाजू पहचान नहीं सकते हैं, मृत्यु अब आने वाली है। और तब जब कीर्तन चलता है तो कई बार देखा है कि भक्त जो होते हैं शरीर छोटे के समय भी धीरे धीरे माला की जो संज्ञा है वो दिखाता है। तो कृष्ण भावना जो है भगवान का नाम है, भगवान का कीर्तन है, भगवान का जो दर्शन है, ये मृत्यु से पहले जन्म से लेकर मृत्यु तक आनंद देने के एक उत्सव, एक उत्सव हो जाता है। और यहाँ पर भीष्म पितामह आगे कहते हैं कि हे कृष्ण, आपका ये जो सुंदर जो दर्शन है युद्ध के ऊपर, एक वीर एक महावीर थे भीष्म पितामह, और वे युद्ध का जो दर्शन है उसमें भगवान का दर्शन का वर्णन करते हैं। अति सुंदर ये वर्णन है। सबसे पहले वो भगवान के केश के बारे में बताते हैं। हे कृष्णा, आपने युद्ध भूमि पर एक मित्रता से अर्जुन के सारथी रूप में आपने वो स्थान लिया, और युद्ध पे आपके जो केश जो थे केश वह तीन चीज बताते हैं विष्णु ने। एक तो वायु से जोर से रथ चलता है तो हवा से आपके केश हवा में सुंदर तरह से फ्लूइंग है, पूरी लय तत्व से वो उड़ रहे थे। दूसरा, घोड़े के चरणों के की जमीन पर दौड़ने के वजह से जो धूल है उसे कहा जाता है संस्कृत में कहते हैं तुरक रज। तुरक रज का मतलब है घोड़े के पैरों की वजह से, हॉर्स हूफ के वजह से युद्ध में दौड़ने की वजह से जो धुलियां जो उड़ती है वो भगवान के कृष्ण के सर के पर बालों में फैली है, और उसी के वजह से जो उड़ते हुए जो केश है उसके ऊपर थोड़ा सा राख के समान उसका रंग हो गया है, राखोड़ी कलर का रंग हो गया है। और तीसरा, ये जो केश जो है भगवान के केश काले केश जो राख के रंग है वो वहां पर बिखरे हुए हैं। ये मॉडर्न साइंस मॉडर्न जो वर्ल्ड है उसमें केश के ऊपर बहुत सारा ध्यान दिया जाता है, सुदृढ़ भी अच्छी तरह से कोम किए हुए केश, लेकिन कृष्ण के केश बिखरे हुए भी है और उसमें धूल है फिर भी उसमें अति सुंदरता भीष्म पितामह शुद्ध भक्त जो है वो कृष्ण के इस रूप को अति सुंदरता से देखते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि आपने परिश्रम, इस युद्ध में परिश्रम हो रहा है तो इस परिश्रम के वजह से आपके चेहरे पर एक श्रमवती श्रम वाली श्रम के वजह से आपके चेहरा जो है वो थोड़े थोड़े प्रस्वेत के बिंदु से आपका चेहरा सुंदर तरीके से अलंकृत है। उतना ही नहीं, लेकिन उसी शरीर पर मेरे बाणों के वजह से आपके शरीर पर जो जो, जो घाव है, हाँ, वह जो सुंदर जो आपका जो स्वरूप है, हाँ, ये सुंदर स्वरूप को मेरा मन हमेशा, हाँ, आकर्षित करता है और मेरा मन हमेशा आपके उस सुंदर स्वरूप की ओर, हाँ, रहना चाहिए। और फिर कृष्ण आगे कहते हैं कि जब युद्ध जब चल रहा था तब आप एक सारथी के समान कृष्ण अर्जुन के आदेश के अनुसार मानो एक एक निम्न प्रकार का एक नौकर मालिक जब आदेश देता है उसी प्रकार से अर्जुन के आदेश के ऊपर आपने अर्जुन का जो रथ है वह दोनों सैन्य के बीच में आपने लाकर रख दिया और वहां पर एक सुंदर तरीके से श्री गोपाल समझाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपने भक्त से उनके आदेश को पाने के लिए भगवान को बहुत ही आनंद बहुत ही मिठास भगवान को लगती है और वहां पर लखा शब्द वापरते हैं सखी वाचो। सखी वाचो का मतलब है कि आपने आपके मित्र के शब्दों के आदेश के ऊपर उसके वजह उसके पास के पूरे प्रेम के वजह से आप उसे उसकी आज्ञा को पालन करते हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं कि हे कृष्ण आपने मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए आपका वचन आपने तोड़ दिया और क्या किया आपने स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा यानी कि मेरी जो अपने मेरी इच्छा पाने के लिए आपने आपकी प्रतिज्ञा तोड़ दी। मतलब कि युद्ध के समय ऐसी परिस्थिति थी कि अगले दिन भीष्म पितामह ने दुर्योधन के कटु वचनों से पीड़ित होकर नकी किया था कि इन बाणों से मैं कृष्ण के पांचों पांडवों का मैं कल विनाश करूं। एक जगह पर श्री प्रभुपाद देते हैं कृष्ण पांडवों के नाइट वॉचमैन भी बने थे। नाइट वॉचमैन यहां पर ये भी रात के समय कृष्ण जाते हैं दुर्योधन से कूटनीति का प्रयोग करके एक्चुअली कूटनीति नहीं कह सकते लेकिन भक्त के प्रेम के वजह से वो जो सारे बाण हैं कृष्ण ले लेते हैं। भीष्म पितामह जान लेते हैं कि पांडवों के जो रक्षक कृष्ण ने ही ये बाण ले लिए हैं और फिर अगले दिन ऐसा घमासान युद्ध होता है कि उस रात को भीष्म पितामह वचन लेते हैं कि कल मैं मेरा युद्ध इतना मैं जोर से करूंगा कि मैं कृष्ण को अपना वचन तोड़ने के लिए मैं उनको मैं कंपेयर करूंगा मैं उनसे ये उनको फोर्स करूंगा कि कृष्ण को अपना वचन तोड़ना पड़े और युद्ध इतना इतनी घमासान युद्ध हो जाती है कि भीष्म पितामह किसी से भी नहीं रुकते उस दिन और ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि अर्जुन की अब मृत्यु होने ही वाली है और तब क्या होता है कृष्ण जो है वह पूरे क्रोध के साथ रथ से उतरते हैं और रथ के चरण मनुष्य के चरण होते हैं ना घोड़ों के चरण होते हैं उस प्रकार से रथ के जो चरण होते हैं वो होते हैं रथ का पहिया और कृष्ण उस रथ के पहिए को उठाकर अति क्रोध के साथ उस रथ के पहिए को अपने सर के ऊपर लेकर भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ते हैं और यहां पर वही श्री गोवर्धन गिरिवर धारी जो है वह हो जाते हैं अर्जुन के लिए अपने भक्त के लिए रथ चरण धारी रथ का जो पहिया है उसे सर पर उठा के पूरे जोर से वो कृष्ण को जो है वो अर्जुन को से दौड़कर वो अपने भीष्म पितामह को मारने की ओर जाते हैं और यहाँ पर एक बहुत सुंदर यहाँ पर उदाहरण है। जीवन में कई बार भक्त के जीवन में हम लोग सोचते हैं कई बार बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है ना विषम परिस्थिति आती है इस तरफ भी परिस्थिति को संभालना है इस तरफ भी परिस्थिति को संभालना है कैसे संभाली जाए बैलेंसिंग एक्ट भक्त के जीवन का रोज बरोज का एक हिस्सा हो जाता है। हम देखते हैं उदाहरण कृष्ण के जीवन से कि कैसे कृष्ण बैलेंसिंग एक्ट करते हैं। एक तो सामने दुश्मन है, बाहरी तौर पर पूरी तरह से उसने सारा घमासान युद्ध कर दिया है, पूरी तरह से संहार कर रहा है। दूसरी ओर अपना प्रिय भक्त है अर्जुन, जिसको बचाना है, जिसको कोई भी परिस्थिति में मारने नहीं देना है। और यहां पर एक तराजू में एक लोखंड का एक सलिया होता है और लोखंड के सलिये के दोनों बाजू दो तराजू के दो तराजू होते हैं। तो यहां पर कृष्ण अपने जो वचन है वो वचन को तोड़ने के लोखंड के सलिये के ऊपर दोनों तराजू को बैलेंस करते हैं। एक बाजू में अपने भक्त का जो शब्द है वो शब्द भी रखते हैं कि आज मैं कृष्ण को अपना वचन तोड़ने के लिए मजबूर करूंगा, और तराजू के दूसरे बाजू अपने प्रिय भक्त अर्जुन की जान भी बचाते हैं। और इस प्रकार से कृष्ण जो है वो अपना वचन तोड़ डालते हैं अपरेंटली। सपोज कि एक रथ के पहिए को लेकर कृष्ण इस प्रकार से अति आश्चर्यजनक परिस्थिति दोनों साथ बाजू कैसे संभालते हैं ये कई बार उदाहरण के साथ दिखा रहे हैं। अश्वत्थामा जब आता है तब कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, मार डालो इसे, खत्म कर डालो, ये नृशंस है, इसने छोटे बच्चों की हत्या की है। और साथ में कृष्ण ये भी जानना चाहते हैं कि अर्जुन क्या करता है, और एक विचक्षण शिष्य के रूप में अर्जुन समझ जाता है कि कृष्ण की इच्छा क्या है। तो एक तरफ से भीम जो है वो मारने के लिए अश्वत्थामा को आते हैं, दूसरी तरफ से युधिष्ठिर महाराज बचाने के लिए अश्वत्थामा को आते हैं। कृष्ण दो हाथों से भीम को संभालते हैं और उसी समय से दूसरे दो हाथ निकल आते हैं और दूसरी बाजू से युधिष्ठिर महाराज को वे संभालते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं जब गदाधर पंडित कहते कि मेरे क्षेत्र संन्यास से मुझे कुछ लेना देना नहीं, तब चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से अरेंज करते कि आपका क्षेत्र संन्यास टूटे भी नहीं और आपका जो मेरे साथ आने का, इस जगह से बाहर आने का जो आपका जो ध्येय है वो भी पूरा हो जाए। जगन्नाथ जी की लीला में एक जगह पर है कि जगन्नाथ जी के एक भक्त की अति तीव्र इच्छा होती है कि कृष्ण ये यशोदा नंदन, ये नंद नंदन है, तो उनका जो वेश जो है वो वृंदावन का वेश होना चाहिए। और राजा जो थे, राजा की इच्छा थी कि कृष्ण जो है पूरे ऐश्वर्य के साथ एक लक्ष्मीपति के रूप में उनका श्रृंगार होना चाहिए। और जब परिस्थिति ऐसी हो जाती है तब जगन्नाथ जी खूब अग्नि के रूप में ज्वलंत रूप में आते हैं और कहते हैं कि दिन में मेरा राजवेश होगा और रात में सोते समय मेरा वृंदावन वेश होगा। सो कृष्ण जो है ये विपरीत परिस्थिति में व विपरीत पहलू में किस प्रकार से बैलेंस परिस्थिति को कैसे संभालना, ये वचन विचक्षणता कृष्ण से हम यहाँ पर देखते हैं। अपने भक्त का शब्द भी रखते हैं, अपने भक्त की जान भी बचाते हैं, लेकिन उसमें अपना वचन जो है उसको भगवान, देखो वचन को संभालना ये बहुत बड़ा चीज है उस समय में। हम देखते हैं रघुकुल रीत सदा चलिए, प्राण जाए पर वचन न जाए। दशरथ महाराज अपने वचन के लिए अपना प्राण त्याग कर देते हैं लेकिन अपना वचन तोड़ने नहीं देते। लेकिन कृष्ण अपने भक्त के प्रेम के सामने अपने आप को चाहे चोर कहलाने को तैयार है, चाहे रणछोड़ कहलाने को तैयार है, कि चाहे अपना वचन छोड़ जो है वो भी कहलाने के लिए तैयार है। अपने भक्त के प्रेम के सामने कृष्ण के लिए कोई भी मानहानि नहीं। और यह सर्वोत्तम गुणगान, भगवान की इस लीलाओं का गुणगान अनंत काल तक भक्त जो है अनेक प्रेम के साथ गाते रहे हैं। अब कृष्ण यहां पर दौड़ रहे हैं भीष्म पितामह की ओर, और कैसा दृश्य है कि भीष्म दुश्मन जो है सामने अपने दुश्मन को मारते हुए आते हैं और दोनों हाथ सामने कर रहे हैं। भीष्म पितामह ऐसे पूरी तरह से सरेंडर होकर खड़े रहते हैं। अर्जुन जो है रथ से तुरंत दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते भगवान के दोनों चरणों को पकड़ लेता है। हमने कभी देखा है ना, ट्रेन में हम देखते हैं एक आदमी लड़ता है, उसके साथ में दूसरा आदमी लड़ता है, और तीसरा आदमी जब रोकने के लिए जाता है तो कई बार ऐसी परिस्थिति है कि दोनों मिलकर तीसरे को मार बैठते हैं। यहां पर कुछ ऐसा है कि अर्जुन जोर से जाता है, भगवान के पैर पकड़ लेता है, नहीं कृष्णा नहीं, और कृष्ण पूरे जोर के साथ भीष्म पितामह को मारने के लिए जा रहे हैं, और देखते हैं कि अर्जुन उस कार्य में विक्षिप्त आ रहे हैं, और कृष्ण को अति गुस्सा आता है अर्जुन के ऊपर। लेकिन वैष्णव आचार्य हम लिखते हैं कि कृष्ण जो है उनको भीष्म पितामह के लिए क्रोध नहीं, भीष्म पितामह की ये इच्छा थी कि कृष्ण का ये स्वरूप मैं हमेशा के लिए देखूं, और इसी इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण ये रथ के चरण को लेकर भाग रहे हैं, और अर्जुन उस इच्छा में अपने भक्त की जो इच्छा है उसी पूरी करने में अर्जुन जब बाधा डाल रहा था तब भगवान बाहरी तरह से गुस्सा दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से कृष्ण अर्जुन से बहुत ही आनंदित थे, क्योंकि उस बाधा के द्वारा उस प्रेम की भीष्म पितामह और कृष्ण के बीच में की जो प्रेम जो था उसकी तीव्रता अर्जुन बढ़ा रहे थे बाधा डालकर। तो ये अलग अलग प्रकार के भक्त और भगवान के बीच में कैसे डीलिंग्स होते हैं, किस प्रकार से उनमें डीलिंग्स होते हैं, यह सामान्य जनों को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस वजह से कई बार जो भौतिक जगत के जो लोग हैं भगवान की अनेकों अनेक क्रियाएं हैं उनको वे समझ नहीं सकते हैं। और फिर आगे विश्व पितामह जो है अपनी इस प्रार्थना में कहते हैं कि आपने मेरी इच्छा पूरी करने के लिए आपका वचन तोड़ दिया, और मानो आप एक जैसे एक सिंह जो होता है वो एक हाथी को मारने के लिए किस प्रकार जाता है उस प्रकार आप मुझे मारने के लिए दौड़े थे, और इस क्रोध में आपने आपका उत्तरिया भी जो है वो आपका गिर चुका है। भगवान श्रृंगार में सर्वोत्तम है, भगवान सर्वोत्तम श्रृंगार करते हैं, लेकिन भक्त के प्रेम के लिए वो अपना उत्तरिया भी जो है वो छोड़कर वहां पर जाने को तैयार हो जाते हैं। और विश्व पितामह कहते हैं मैं ये स्वरूप को भी मेरी आंखों के सामने हमेशा रखना चाहते हैं। और फिर आगे पितामह कहते हैं कि आपका शरीर जिसके ऊपर मेरे बाणों से रक्त के बुंद थे, अभी थोड़े पे समय पहले भीष्म पितामह कहते हैं कि आपके चेहरे पर आपके शरीर पर सुंदर चंदन का लेप था, ये सुंदर दृश्य। और यहां पर भीष्म पितामह कहते हैं कि आपके शरीर पर बाणों से लगे हुए जो घाव है उससे निकलता हुआ रक्त, ये अति सुंदर दृश्य। कृष्णा इज एब्सोल्यूट, भगवान के शरीर पर चंदन का लेप हो या युद्ध में एक शौर्य में भगवान के शरीर पर रक्त का निशान हो, ये दोनों के बीच में कोई भी फर्क नहीं। कृष्ण कभी भी वो उनको घाव कभी भी लग नहीं सकता है, ऐसी कोई शक्ति ये सारे त्रिलोक में सारे अस्तित्व में भौतिक आध्यात्मिक नहीं है जो कृष्ण के शरीर के पर घाव करने के शक्तिमान है। लेकिन भक्त के प्रेम के लिए कृष्ण जो है वो अपने शरीर के ऊपर घाव की लगाने के लिए तैयार है। और फिर अगले श्लोक में भीष्म पितामह एक सुंदर शब्द पढ़ते हैं, विजय रथ कुटुंब आत्मतोत्रे, हे कृष्ण आप जो है मृत्यु के समय मेरा मन उस कृष्ण के ऊपर रहे रखो, मेरा मन उस कृष्ण के ऊपर रहे जो अर्जुन के रथ के रक्षा के लिए। यहाँ पर ऊपर जो कुटुंब शब्द है उसका बहुत सुंदर अर्थ देते हैं। जनरली कुटुंब शब्द का अर्थ हमारे मन में क्या होता है, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, ये हमारे स्वजन, यह कुटुंब है। लेकिन यहां पर कुटुंब का अर्थ श्री प्रभुपाद लेते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन एट ऑल रिस्क। कुटुंब ये यह जो हम सोचते हैं भौतिक जगत से उसका कुटुंब का अर्थ नहीं है, कुटुंब का अर्थ ऐसा है ऐसी चीज जिसकी रक्षा हर परिस्थिति में कोई भी रिस्क के साथ में जिस चीज की रक्षा की जाती है उसे कुटुंब कहते हैं। और इसीलिए यहां पर शब्द बताया गया था रथ कुटुंब। कृष्ण यहां पर अर्जुन के रथ की रक्षा के लिए कोई भी चीज करने को तैयार थे और वह कृष्ण जो है मेरा मन उस कृष्ण की उस रूप को मेरे मन के सामने रहे जहां पर कृष्ण ने एक हाथ में दाहिने हाथ में घोड़ों को मारने के लिए चाबुक ली है और बाएं हाथ में घोड़ों को पकड़ने की जो रस्सियां हैं वो पकड़ा है और यह जो कृष्ण है ये हमेशा मेरे सामने रहे। और यहाँ पर भीष्म पितामह कहते हैं यही स्वरूप कृष्ण का यही स्वरूप को देखते हुए जिन्होंने ये स्वरूप को देखा उन्हें अपनी स्वरूप्य मुक्ति मिली। श्री प्रभुपाद यहाँ बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर कहते हैं कि कृष्ण किससे ज्यादा कृपालु थे इस युद्ध में अर्जुन पे या दुश्मनों पे। श्री प्रभुपाद देखते हैं कि as far as the military features of the Lord is concerned, Bhishmati will observe this with more relish than Arjun. Arjun Krishna के पीछे थे और इसके वजह से कृष्ण का ये सुंदर शौर्यशाली जो स्वरूप है ये अर्जुन देख नहीं सके। अर्जुन के ये भाग्य नहीं था लेकिन दुश्मन के हर एक सैनिक ने जिन्होंने कृष्ण का ये सुंदर स्वरूप जो देखा है उस स्वरूप को देखते जिन्होंने शरीर छोड़ा वे तुरंत भगवान के धाम में उनके ओरिजिनल स्वरूप में भगवान की सेवा करने के लिए चले। और यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर बताया जाता है कि कृष्ण को भक्त वत्सल कहा जाता है कि भक्तों के लिए उनके हृदय में हमेशा वत्सलता रहती है किंतु कृष्ण यहाँ पर कृपण वत्सल कहा। कृपण यानी जिस व्यक्ति जो व्यक्ति के हृदय में कृष्ण के लिए ईर्ष्या है दुश्मनावट है राक्षसी वृत्ति जो है ऐसी व्यक्ति कृपण कही जाती है क्योंकि उसके हृदय में बहुत ही कृपणता है भगवान को वो प्रेम नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति कृष्ण के साथ ईर्षित थे और वे दुश्मन के सैन्य में थे उनके लिए भी कृष्ण कृपण वत्सल है क्योंकि जैसे ही उनकी मृत्यु हुई वहां पर कृष्ण का ये सुंदर स्वरूप को देखते हुए तुरंत वो जो है वो भगवान के धाम में ये भगवान के सेवा के लिए वहां पर पहुंच गए। और इस तरीके से भीष्म पितामह जो है वो जो आगे अपनी प्रार्थना आगे वे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि हे कृष्ण अब जो है मेरा जो ये जो मन है जिस प्रकार से गोपियों ने आपका जिस प्रकार से विरह में आपकी जिस प्रकार से हमेशा ध्यान रखा था उसी प्रकार से मैं भी आपका ध्यान हमेशा मेरे मन में रखना चाहता हूँ। शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के शोध में भगवान के ढूंढने के प्रयत्न में हमें रहना ये सर्वोत्तम स्थिति है। इस पॉइंट पर श्री प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान को ढूंढने की परिस्थिति में सर्वोत्तम जब हम रहते हैं उस स्थिति में हम 24 घंटे कृष्ण के बारे में सोच सकते हैं। ये उदाहरण श्रीमद् भागवत में अक्रूर जी जब जा रहे हैं तब दिखाया गया है विदुर जी के लिए दिखाया गया है उद्धव जी के लिए दिखाया है कि कृष्ण के आकांक्षा में भक्त जब यहाँ वहां जब घूमते हैं ये सर्वोत्तम स्थिति है क्योंकि उस समय जो कृष्ण जो है वो कृष्ण जो है वो हमेशा उस भक्त के साथ उस आकांक्षा के रूप में हमेशा रहते हैं। और फिर श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि यह जो पार्थ सारथी जो कृष्ण जो है ये पार्थ सारथी कृष्ण और वृंदावन कृष्ण ये दो में कोई फर्क नहीं। श्री प्रभुपाद ने दिल्ली में श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर का सुंदर ये प्रभुपाद के शिष्य द्वारा सुंदर मंदिर का निर्माण कराया था। तो राधा वृंदावन कृष्ण और युद्ध भूमि पर पार्थ सारथी कृष्णा उसमें कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि कृष्ण जो है वो कोई भी परिस्थिति में कहीं पर भी हो हमेशा जो है वो वृंदावन से दूर नहीं रहते हैं। और फिर इस सुंदर कृष्ण के दर्शन करते हुए शुक्ल गोस्वामी श्री अशुक गोस्वामी कहते हैं कि अपने हृदय अपने मन और अपनी सारी इंद्रियों को, अपना मन अपनी जीवा अपनी आंखें और अपनी सारी इंद्रियों के द्वारा कृष्ण ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। और फिर उनकी सारी बाहरी जो गतिविधियां थी वो शांत हो गई और उनकी जो सांस जो है वह वहां पर थम चुकी। श्री प्रभुपाद लिखते हैं इसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। निर्विकल्प समाधि ये शुद्ध पद के द्वारा शक्य है कि जिन्होंने अपना सारा एक एक अस्तित्व का एक एक कण जो है वो भगवान के ध्यान में लगा दिया। और जिस प्रकार से जब संध्या होती है, जब शाम होती है, तब सारे पंछी जो है वो शांत हो जाते हैं। सूर्य अस्त होते ही सारे पंछी शांत हो जाते हैं। उसी प्रकार से एक महान वीर, एक महान भक्त भीष्म पितामह जब अपना शरीर जब छोड़ते हैं, तब जो है सारे जो जग जो है वहां पर शांत हो जाते हैं। और फिर आकाश से दुदुम्बियां बजने लगती हैं। आकाशीय देवतागण जो है वो भीष्म पितामह के पर सुंदर तरीके से पुष्प वर्षा करते हैं। और इस प्रकार से एक महान सेनानी भीष्म पितामह है उनका इस भौतिक जगत के बाहर निकला है वो समाप्त होते हैं। हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी हम अगर देखें तो उनके जो आखिरी लीला समाप्त, बाहरी लीला समाप्त करने का जो समय जो था, उस समय में श्रील प्रभुपाद शरीर की कितनी क्रूश काय में हो गए थे, बोलने के लिए भी उनके पास शक्ति नहीं थी। जो सीढ़ी अगर हम देखें उसमें पता चलेगा, फिर भी माइक के साथ श्रील प्रभुपाद अंतिम समय तक भागवत कथा जो है श्रीमद भागवत है उनका ट्रांसलेशन कर रहे थे। भीष्म पितामह की कथा में हमने देखा कि भक्त कृष्ण ये पुरवार करना चाहते कि भक्त शारीरिक कितनी भी कठिन अवस्था में क्यों ना हो, कितनी भी शारीरिक के स्थिति विषम क्यों ना हो, लेकिन भक्त अपनी आध्यात्मिक ऑन द डिंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता के बल पर भक्त अपनी मानसिक रीते संपूर्ण रीते वह आध्यात्मिक स्थिति में रहते हैं। श्रील प्रभुपाद के द्वारा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति में होते हुए भी श्रीमद् भागवतम का जो रूपांतर है और उन्होंने आखिर दिन तक नहीं छोड़ा, भक्तों के बीच में प्रचार करना है उन्होंने आखिर दिन तक नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद का जीवन का हर जो क्षण था वो एक भगवान की सेवा में और दूसरा भक्तों का हृदय शुद्ध भक्त के रूप में उनकी ओर आकर्षित कर कर श्रील प्रभुपाद हमारे बीच ये सुंदर श्रीमद् भागवतम हमारे बीच पे रहते थे। तो ये जो कथा जो है पहली जो कथा का जो पहला हिस्सा है हम यहाँ समाप्त करते हैं भीष्म पितामह के जीवन के ऊपर। थोड़ा समय है और परीक्षित महाराज के लिए 9:30 हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सो ये सुंदर कथा हमने अभी पढ़ी भीष्म पितामह, ये पहले कैंटो में है। दूसरी जो कथा है परीक्षित महाराज के बारे में, यह भी एक बहुत ही देखो भक्तों की जो कथा जो होती है, भक्तों के जीवन के बारे में जो कथा जो है, ये जब हम पढ़ते हैं तब कई बार हृदय जो है वो आश्चर्य से भर जाता है कि ऐसा भी हो सकता है, ये शक्य है। परीक्षित महाराज अपने माँ के गर्भ में जब थे तभी से उनको डेंजर, जीवन के ऊपर उनके सबसे पहले एक क्षत्रिय के ऊपर माँ के गर्भ में भी अटैक हुआ हो, ये परीक्षित महाराज की कथा में हम देखते हैं। एक शुद्ध भक्त के रूप में वे अपने माँ के गर्भ में थे, तभी से अश्वत्थामा की कथा, अश्वत्थामा की कथा आती है कि लड़ाई अब खत्म होने आई है। अश्वत्थामा पूरी निसहाय स्थिति में उसके हृदय की ईर्ष्या के वजह से पांडवों के एकमात्र जो वंशज जो है वह परीक्षित के ऊपर वे सबसे अति तीव्र कोई अस्त्र जो है, आज हम न्यूक्लियर बॉम्ब की हम बात करते हैं तो इस न्यूक्लियर बॉम्ब से भी अनेकों अनेकों हजारों गुना जो तीव्र जो अस्त्र था वह अस्त्र जो है वह इस आखिरी वंश पांडु वंश के ऊपर वो डाल देगा। और तब उनकी जो माँ है वो अति निसहाय स्थिति में कृष्ण कृष्ण महाबाहो कृपया करे कृष्ण मुझे बचाइए, मेरे घर को बचाइए। जब भक्त असहाय स्थिति में निसहाय स्थिति में पूरी तीव्रता से भगवान को जब बुलाते हैं, आज तक इतिहास में भूतकाल में वर्तमान में या भविष्य में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि भगवान वहां मदद के लिए नहीं पहुंचे। द्रौपदी के जीवन में हम देखते हैं जब द्रौपदी ने पूरी असहायता से कृष्ण का जब नाम लिया तब कृष्ण रुक्मिणी के साथ द्वारका में थे और कृष्ण ये अचानक वहां से खड़े हो चुके और रुक्मिणी देवी कहती है कृष्णा कहां जा रहे हो? नहीं मुझे द्रौपदी ने बुलाया, बहुत ही जल्दी जाना पड़ेगा, तो रथ ले जाओ। नहीं रथ काम नहीं आएगा। गरुड़ जी के लिए नहीं, गरुड़ जी का काम नहीं आएगा। गोविंद प्रभु बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि आज द्रौपदी ने अपने असहायता के आंसुओं के साथ एक पुल बनाया है जो उसके राज्य से द्वारका तक वो पुल बनाया, मैं उसी पर दौड़कर मैं तुरंत में जाऊंगा। और वहां पर साउथ में एक ब्रह्मचारी प्रभु क्लास दे रहे थे, तब कह रहे थे कि वैष्णव पूछते हैं कृष्ण आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना है जो आपको लगता है कि आप कुछ कर नहीं सके? बोलते हैं हाँ एक घटना ऐसी है कि द्रौपदी के समय जब उसको सबसे मेरी ज्यादा जरूरत थी तब मैं द्रौपदी को बचा नहीं सका। वैष्णव पूछता है ऐसे कैसे कहते हैं कृष्ण, आप तो थे तभी पर, आप ही ने तो द्रौपदी को वस्त्र दिए। तो कृष्ण कहते नहीं मैंने वस्त्र नहीं दिए द्रौपदी को, द्रौपदी को वस्त्र दिए मेरे नाम नहीं। सो भगवान का जो नाम है, जब नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कृष्ण ये कहते हैं कि मेरे नाम के वजह से द्रौपदी को जो है वो सारे वस्त्र। So, असहायता में जब भी भगवान का नाम भक्त जब लेता है तब कृष्ण वहां पर मौजूद होते हैं और वही नाम हमें आज श्रील प्रभुपाद की कृपा के द्वारा इस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हमारे बीच में। तो जब उत्तरा जब पूरी असहायता भगवान का जब नाम लेती है तब कृष्ण एक क्षण के भी अंदर एक अंगूठे के समान उनका कद हो जाता है और वे तुरंत द्रौपदी के उत्तरा के घर में चले जाते। श्री प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं, वो कहते हैं कि कृष्ण चाहे तो एक ऐसा स्वरूप ले सकते हैं जिसमें अगणित ब्रह्मांड उनके शरीर के छिद्रों से बाहर आ सकते हैं और कृष्ण चाहे तो इतना छोटा रूप ले सकते हैं कि वो एक अणु के अंदर भी समा सकते हैं। एक भक्त कहते हैं कि कृष्णा कैन बिकम, कृष्णा चाहे तो इतने छोटे से रह सकते हैं कि अणु के अंदर जाके वो लंबे मीलों तक वो चल सके, इतना छोटा हो सकते हैं। तो ये भगवान की ये क्षमता है कि कृष्ण हमारे सामने, वही कृष्ण जो है अर्च विग्रह के रूप में श्री श्री राधा गिरिधर जी के रूप में, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में हमारे सामने आते हैं। यह उनकी अस्मितता का एक स्वरूप है, कृपा की अस्मितता का। हमारी ये कृपण दृष्टि है कि हम भगवान को एक कास्टर या तो एक पत्थर के रूप में हम देखते हैं, लेकिन भगवान की कृपा की असीमितता यह है कि वे हमारे सामने अचुविदा के रूप में आते हैं और हमारी पूजा अर्चना को भी स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से परीक्षित जी के सामने कृष्ण आते हैं और उस समय उनका जो वर्णन जो किया है वो बहुत ही सुंदर वर्णन दिखाया गया। चतुर्भुज स्वरूप था, सूर्य के समान मुकुट था, तमाल के समान उनका घना उनका रंग था, अति सुंदर उनके केश थे। लेकिन यहाँ पर अभी हमने विष्णु पितामह के कथा में देखा कि विष्णु पितामह कृष्ण की आंखें सवेरे की सूरज की कुमाश उस लालाश के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक भक्त को बचाने के लिए कृष्ण की आंखों का रंग जो है वो अति तीव्र लालाश भरा रंग बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर वे क्रोध से लालायित थे अपने भक्त को बचाने के, और हाथ में गदा लिए वे चारों ओर एक अग्नि के समान एक तारे के समान वे घिम घूम रहे थे। और उसी जगह पर उन्होंने उस तरह से ये जो ब्रह्मास्त्र जो है कभी भी ब्रह्मास्त्र को कभी भी बचाना जो है ब्रह्मास्त्र से बचना ये मुमकिन नहीं होता, शक्य ही नहीं होता है। लेकिन कृष्ण अपने भक्त के लिए उसे इस ब्रह्मास्त्र से बचाते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं परीक्षित महाराज को कृष्ण क्यों बचाते हैं। एक उत्तरा माता की असहाय से भगवान के नाम की पुकार, दूसरी परीक्षित महाराज का जो चरित्र था यह चार श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से यहां लिखते हैं कि एक स्पॉटलेस वाइट, एक ऐसा चरित्र जिसके पर एक इतना सा भी दाग नहीं हो, ऐसा दाग परीक्षित महाराज का था। और इसी की वजह से श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे शुद्ध चारित्रवान भक्त, ऐसे शुद्ध शास्त्र, ऐसे शुद्ध भगवान के मिशनरी और ऐसे भगवान के रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे इन चीजों की कृष्ण हमेशा हमेशा रक्षा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। और तीसरा कारण था कि अपने भक्तों जो पांडु और पांडवों के यह एक ही उनके कुल के यह एक ही आखिरी जो दीपक था जो बचना बहुत ही आवश्यक। और चौथा कारण था कि इन्हीं भक्त के वजह से परीक्षित महाराज के वजह से जब अब कलयुग की शुरुआत हुई है और कृष्ण अपनी बाहरी लीला समाप्त करेंगे और सारे पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा, तब एक सूर्योदय के समान भागवतम का उदय परीक्षित महाराज के वजह से। और ये अनेक कारण है जिसके वजह से कृष्ण जो है वह परीक्षित महाराज को वहां पर उतरा के गर्भ में जाकर उन्हें बचाते हैं। आगे जब जाते हैं जब परीक्षित महाराज का जब जन्म होता है तब सारी ज़ोडियक साइन से सारे जो नक्षत्र थे वो सारे नक्षत्र सर्वोत्तम परिस्थिति में थे। आज का जो भौतिक आधुनिक जो ज्ञान है इस नक्षत्रों को इस स्टार्स के जो नक्षत्रों की जो परिस्थिति जन्म के समय उसको मानते नहीं है। लेकिन श्रील प्रभुपाद देते हैं कि जीव जब अपने अगले जन्म के जो जो कार्यो है आध्यात्मिक परिस्थिति के अनुसार जब उसकी जन्म होता है तब इस प्रकार से नक्षत्रों का इस प्रकार से होता है, उनकी परिस्थिति उनकी स्थिति नक्षत्रों की होती है। जैसे भी उनका जन्म होता है तब सारे जो ज्योतिष आते हैं वो अति सुंदर रीति से परीक्षित महाराज का ज्योतिष कहते हैं क्या होगा। तो कहते हैं कि यह जो व्यक्ति जो है वे वह सबसे महान व्यक्ति होगा। उनकी उपमा अलग अलग लोगों से दिया जाती है, पृथ्वी महाराज के समान उपमा होगी, गयाति के समान होंगे, मनु के समान होंगे, बहुत सुंदर वो बड़ा लंबा लिस्ट में है, दयावान होंगे, दया के लिए वे ऐसे होंगे। और फिर कहते हैं कि यह जो व्यक्ति है वह एक भय भी फियरलेस, इस बालक के हृदय में भय कभी भी नहीं रहेगा, और यहां तक कि इस बालक के हृदय में जिस भय से सारा ब्रह्मांड पीड़ित है ऐसा भय जो मृत्यु का भय है वह भी इस बालक को कभी भी असर नहीं कर पाएगा। और इस वजह से ये जो बच्चा जब पैदा होता है तब उसने बचपन से ही अपने माँ के गर्भ से ही उसने श्री कृष्ण के दर्शन किए, और इसी वजह से वो बचपन से ही यहां वहां परीक्षा करता रहता है, कहां है वो व्यक्ति जिसको मैंने माँ के गर्भ में देखा था। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, सातवें महीने के बाद जो जीव जो है उसे आजू बाजू क्या चलता है वो माँ के गर्भ में समझने आता है। और प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि जिस प्रकार से परीक्षित महाराज को माँ के अंधकारमय गर्भ में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं, उसी प्रकार से ये जो सारी जो भौतिक जो जगह है, भौतिक जगत जो है, ये भौतिक जगत जगत भी मटेरियल नेचर, हाँ, भौतिक प्रकृति के गर्भ के अंधकारमय स्थिति के समान है। हर जीव जो है वह भी इस भौतिक जगत में पीड़ित अवस्था में भावना कॉन्शियसनेस बहुत ही जिसकी सीमितता है, ऐसी स्थिति में हर जीव इस भौतिक जगत के प्रकृति के भौतिक प्रकृति के गर्भ में हम हर जीव हैं। और इसी प्रकृति में इसी स्थिति में जैसे परीक्षित महाराज को कृष्ण ने आके दर्शन किया, भगवान अपने नाम के द्वारा इस माँ के गर्भ में हर जीव को कृष्ण आते हैं और दर्शन देते हैं कि आओ निकलो, इस चीज से इस भौतिक जगत से बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है। और यह बहुत ही जरूरी है कि हर माँ को अपने बालक को गर्भ से किस प्रकार से संस्कार देना चाहिए। जब माँ को माँ अपने गर्भ में बालक को जो संस्कार देती है वही संस्कार आगे जाके उस बालक का उस व्यक्ति के रूप में उसका कैरेक्टर जो है वो बनाने में मदद होता है। बहुत साल पहले की कथा है कि मोजार्ट नाम का एक म्यूजिशियन था, बहुत बड़ा वो म्यूजिशियन था, और उसकी माँ उसे बचपन में छोटा सा था, 4 या 5 साल का था, तब मोजार्ट को म्यूजिक के लिए कंसर्ट में लेके जाती थी, और म्यूजिक के अलग अलग प्रकार के पीसेस होते हैं। तो मोजार्ट अपनी माँ से कहता है कि माँ मैंने ये जो म्यूजिक का जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है मैंने कभी भी सुना नहीं, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि ये मैंने सुना है, ये ऐसे क्यों? तो माँ हंस के बोली कि तू जब बेटा मेरे पेट में था तब मैं यही कंसर्ट यही पीस म्यूजिक के मैं सुनने के लिए आया करती थी, इसी के वजह से तुझे भी पता है कि ये जो इस हिस्सा जो है वो तुझे जानता है। तो हर माँ को अपने बचपन से अपने बेटे के अपने बच्चे के गर्भ के समय से ही ये संस्कार लेना, भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ना, ये बहुत ही महत्व का हिस्सा है। खास करके ये जो आने वाला जो समय जो है, इस काले समय में अगर ये कालजी नहीं ले तो बच्चों का भविष्य जो है वो काफी कलुषित हो सकता है। परीक्षित धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, युधिष्ठिर महाराज आनंद से, उनकी कोई सीमा नहीं है, सारे पांडव का ये एक ही इकलौता बेटा है, सोचिए कितना आनंद होगा। लेकिन फिर भी इस प्रेम के अतिरेक में पांडवों ने अपने इस वंशज को बड़ा चढ़ाकर पैम्पर्ड बॉय जो बोलते हैं ऐसा कभी भी नहीं हो रही, उसकी पूरी काजी ली रही कि आगे जाके एक सम्राट के रूप में एक वैष्णव राजा के रूप में उसका जो जिस प्रकार से उसका सांगोपान करना चाहिए उस प्रकार से उन्होंने किया। धीरे धीरे समय कली का बढ़ता रहा है और परीक्षित महाराज युधिष्ठिर महाराज जान जाते हैं कि अब समय आया है कृष्ण इस पहाड़ी लीला को समाप्त कर देते हैं और अब समय आया है कि अब हमें ये आगे चलना है। तो पूरे वैष्णव तरीके से देखो भौतिक जगत में युधिष्ठिर महाराज के पास सब कुछ था, दुश्मन रहित राज्य, सुंदर पत्नी, जो कहे वो करने के लिए तैयार, करने के लिए तैयार, चारों भाई, सारा पृथ्वी का राज्य, ऐसा भागवतों में लिखा है कि ऐसा ऐश्वर्य था युधिष्ठिर महाराज के पास कि देवता गण जो थे ये देवता गण भी ईर्ष्या करते थे युधिष्ठिर महाराज की कि शायद हमारे पास इतना ऐश्वर्य हो, जो देवता होते हुए भी हमारे पास इतना ऐश्वर्य, और इतना ऐश्वर्य होते हुए भी युधिष्ठिर महाराज पूरी तरह से इस ऐश्वर्य के साथ, इस भौतिक सुख के साथ वे निर्लिप्त थे। और जब उन्हें लगा कि अब छोड़ने का समय आ गया है, तुरंत एक पर्टिकुलर यज्ञ जो है, जिसका नाम भगवत ने बताया, वो यज्ञ करके उन्होंने तुरंत ही जो है, जो अपनी जो अंतिम जो दिशा है वहां पे और उन्होंने प्रस्थान कर लिया। और परीक्षित महाराज जो है, परीक्षित को उन्होंने अपना जो उत्तराधिकारी है उसके बारे में रख देते हैं। परीक्षित जब उत्तराधिकारी बनते हैं तो पूरी उनके अंदर नम्रता है, कैरेक्टर है, सारे गुण जो युधिष्ठिर ने बताए थे, सारे गुण युधिष्ठिर परीक्षित महाराज में उनके अंदर थे। और वे बड़े हुए, अपना राज्य अच्छी तरह से कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि धीरे धीरे समय खराब आ रहा है, कली की असर धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। ऐसे स्थिति में उन्होंने तीन हॉर्स सैक्रिफाइस जो अश्वमेध यज्ञ किए, एक नहीं दो नहीं तीन अश्वमेध उन्होंने किए। और इस अश्वमेध यज्ञ के बाद जब उन्हें समझ में आया कि अब कली पूरी तरह से अब बढ़ रहा है, तब उन्होंने अपने पूरे सैन्य के साथ इस कली के साथ युद्ध करने के लिए वे अपने राज्य से वे निकल पड़े। युधिष्ठिर महाराज के जो घोड़े थे वो सफेद, अर्जुन के जो घोड़े थे वो सफेद रंग के थे, परीक्षित महाराज के जो घोड़े थे वो काले रंग के थे, और उनके ऊपर जो थे अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वजा थी उसके हनुमान जी थे, परीक्षित महाराज की जो ध्वजा थे उसके ऊपर एक सिंह का ध्वजा हुआ करते थे। और इस तरह से वे पूरे पृथ्वी के ऊपर वे भ्रमण उन्होंने चालू किया। जहां जहां वे जाते थे वहां वहां अनेकों अनेक लोग उनको मिलने के लिए आके उमड़ पड़ते थे। क्यों? एक सिर्फ राजा है इसके लिए नहीं, लेकिन पांडवों के पौत्र, भगवान के शुद्ध भक्त, उनके पौत्र उसी शुद्धता के साथ उनके बीच में आए हैं, इनके लिए उनका स्वागत करने के लिए वे वहां पर उमड़ पड़ते थे। और तब श्रीमद् भागवतम एक अति सुंदर एक उदाहरण दिया जाता है। एक जगह पर परीक्षित महाराज जब जाते हैं, तब वहां पर जब लोग उनके आंखों में अश्रु के साथ जब उनका स्वागत करते थे, तब एक जगह पर सारे जो लोग हैं वो आकर परीक्षित महाराज से क्या कहते हैं, आपके जो दादाजी थे, पांच आपके जो दादाजी थे, वे पांचों दादा, पांचों जो पांडव थे, वो कृष्ण को इतना प्रिय क्यों थे? क्यों? क्योंकि कृष्ण की जो भी इच्छा थी उस इच्छा को पूरी करने के लिए वे हमेशा तैयार थे। और श्रीमद् भागवतम ने इसके लिए एक शब्द इंग्लिश में वापर किया, श्री प्रभुपाद, पांडवास वर ऑलवेज मैलिएबल फॉर डिजायर ऑफ गॉड। मेलियबल अर्थ का अर्थ है कि जो हमारे ऑर्थोपेडिक्स में एक रिट्रैक्टर आता है जो तांबे का होता है, सो उस तांबे के पट्टी जैसे उसको किसी भी एरिया में आप बेंड करो वो बेंड हो जाता है। तो ऐसी चीज जो कोई भी परिस्थिति में किसी की जगह जिसे मोड़ सके उसे मेलियबल कहता जाता है। सो भगवान की जो भी इच्छा थी वो इच्छा को पूरी करने के लिए पांडव हमेशा मैलेबल, हमेशा फ्लेक्सिबल, हमेशा तैयार रहते थे। इसी कारण से कृष्ण भी हमेशा अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर और उत्सुक रहते हैं। ये हमारे लिए भक्ति में बहुत बड़ा एक उदाहरण है। भक्ति में सज्जड़ता, जड़ता कभी भी नहीं हो सकती। हम जब छोटे थे तब एक भजन कृष्णचंद्र प्रभु के घर में गाते थे, राम राखे तेम रहिए उद्धव जी, राम राखे तेम रहिए, जैसे राम रखे ऐसे हम रहेंगे। चिट्ठी ना चाकर चाहिए, एक चिट्ठी का जो चाकर होता है, चिट्ठी का चाकर यानी एक नौकर, मालिक जो चिट्ठी लिखता है नौकर चलने के लिए तैयार है, राम राखे तेम रहिए। तो ये भक्त की यह एक निशानी होती है कि भगवान की जो भी इच्छा है वो पूरी करने के लिए भक्त हमेशा तैयार रहता है। और यही वजह है कि ये जो सारे जो पांडव जो है, ये पांडवों की कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान भी हमेशा उत्सुक और तत्पर रहते हैं। श्री प्रभुपाद यहां पर बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं श्लोक में, सिर्फ भगवान और भक्त के बीच में ही सिंपली बाय एप्रिशिएटिंग द डीलिंग ऑफ द लॉर्ड विद हिज डिवोटीज वन कैन अटेन सॉल्यूशन। भगवान और भक्त के बीच में के इस प्रकार से अंतरंग जो कार्य, अंतरंग जो जीवन शैली है, सिर्फ ये जीवन शैली को अगर हम समझने की कोशिश करें, उनको अगर हम एप्रिशिएट करने की कोशिश करें, तो भी हम भक्ति में सर्वोत्तम स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, श्री प्रभुपाद लिखते हैं, ये लगता है बहुत ही सादा सीधा, it appears to be very ordinary, but who knows them in truth becomes eligible to go back home back to God। ये भक्त और भगवान के बीच में की जो जो आदान प्रदान है, ये बहुत ही सादा सीधा लगता है, लेकिन उसे जो समझ सकता है वो भगवान के घर जाने के लिए लायक हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु भी माधवेंद्रपुरी की लीला में ये कहते हैं कि भक्त और भगवान के बीच में की जो लीला है, ये कोई समझ नहीं सकता है। उसे समझने के लिए भी बहुत ही शुद्धता लगती है। लेकिन अगर हम श्रीमद् भागवतों में इस प्रकार से पन्नों के द्वारा भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के बीच में की लीलाओं को श्री प्रभुपाद के शब्दों के द्वारा अगर समझने की कोशिश करें, तो भी हम भगवत धाम वापस जाने का एक पहला पहलू तो हम चुरा सकते हैं। तो इसी की वजह से भगवान, इसी की वजह से जब हमने अभी पढ़ा, विष्णु पितामह कह रहे थे कि कृष्ण आप पांडवों के आप एक मित्र थे, आप उनके गाइड थे, आप उनके फिलोसोफर थे, आप उनके कजिन थे, आप उनके रथ के चालक थे, आप उनके मैसेंजर थे, यहां तक कि आप उनके जो भी कुछ करने के लिए तैयार है, नाइट वॉचमैन भी तैयार। क्यों? क्योंकि वही भक्त जो है भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो भगवान भी जो है भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। दामोदर लीला में ये देखते हैं कि यशोदा माई का जो प्रेम जो है, वो प्रेम को पाने के लिए कृष्णा अपने सारे ऐश्वर्य को छोड़ देने को तैयार है। लक्ष्मीपति के रूप में छोड़ दिया, भूख लगी है खाना दो, चोरी करते हैं चोर कह रहे हैं, भाई मृत्यु जिससे कांपता है, भय जिससे कोई कांपता है, वही कृष्णा मां के भय के सामने थर थर कांपते हैं। जो सारे त्रिलोक को तीन प्रकार के गुणों से जिसका चरणी करते हैं, खुद यशोदा माया का चरणी गुण लेकर खड़े रह जाते। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है ये भक्त के प्रेम के सामने हमेशा जो है वो आधीन हो जाते हैं। परीक्षित महाराज अपने इस युद्ध में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक जगह पर वे देखते हैं कि एक अति दुखित गाय, माता गाय वहां पर क्रुदन कर रही है। अभी थोड़े ही समय पहले, अभी ये फर्स्ट कैंटो है भागवतम में, जब टेंथ कैंटो जब आता है कृष्ण भगवान के जन्म के समय के पहले की जो है, वहां पर भी माता पृथ्वी एक गाय के रूप में क्रुदंतित अवस्था में ब्रह्मा जी के पास जाती है। यहाँ पर भी वही गाय जो है अति क्रुदंतित अवस्था में रोती हुई वहां पर दिखाई देती है और उसी के सामने, उन्हीं के सामने एक बैल आता है जिसके तीन पैर टूट चुके हैं और जिसका एक ही पैर बाकी है। तो ये गाय कौन है? ये जो गाय है वो माता धरती माता है। जो आज तक कृष्ण इस पृथ्वी पर थे तब तक धरती माता पूरे आनंदित स्थिति में थी, लेकिन अचानक कृष्ण जो है इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए और फिर अधर्म का जो राज्य है वो धीरे धीरे पड़ने लगा और उसी समय ये जो बैल जो आता है, वो बैल वहां पर आकर जो तीन पैर नहीं है, इन बैल कौन से, ये कौन है बैल, ये धर्म स्वतः खुद धर्म है, जिसके हाँ हाँ जो ऑस्टेरिटी हाँ क्लीनलीनेस मर्सी और ट्रूथफुलनेस, ये जो चार पैर धर्म के थे उसमें से सिर्फ सच्चाई यही एक पैर बचा था, हाँ बाकी के जो तीनों पैर थे वो टूट चुके थे। अब बैल जो है पूछता है, माँ आपको क्या हुआ, क्यों आपके इतने पुनर्जन्म थे, क्यों आपके इतने रो रहे हैं, और सुंदर एक प्रश्नावली है बैल की। और उस समय परीक्षित महाराज वहां पर आते हैं और क्या देखते हैं, एक व्यक्ति जो काले कपड़ों में सच है, दिखती है बाहर से राजा जैसी, लेकिन अति क्रूर तरीके से वो उस गाय और बैल को वो पीड़ा दे रहा था। और तब परीक्षित महाराज को समझ में आता है ये वही व्यक्ति है जो इस अभी पृथ्वी पर जो सारी अराजकता की जो सारी जो शुरुआत जो चल रही है उसका मूल कारण यह कली खुद है। और तुरंत अति क्रोध के साथ एक राजा को जिस प्रकार से करना चाहिए उस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में कली के इस समय की 5000 साल पहले का जो वर्णन दिया है एब्सोल्युटली शिला प्रभुपाद जो लिखते हैं मानो आज का समय लिख दे, उस समय मानो एक फास्ट फॉरवर्ड के समान हम जब पढ़ते हैं किस प्रकार से राज्य शासक होंगे, किस प्रकार से समाज होगा, किस प्रकार से अध्यात्म के नाम पे किस प्रकार से चीजें कही जाएगी, ये सारी चीजें ऐसा लगता है मानो हम आज ही के समय में ये सारा हम कल ही ये चीजें लिखी हो ऐसा दिख रहा है। तो ये कली का ये प्रभाव है। और तब परीक्षित महाराज कली को दंड लेने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं कि आपको मैं दंड देने के लिए तैयार हूं क्योंकि आप माता पृथ्वी और धर्म का आप विनाश कर रहे हैं। अभिमान से जो है वो ऑस्टेरिटी उसका नाश हो जाता है, क्या काम वृत्ति से स्वच्छता का नाश हो जाता है, शराब और इंटॉक्सिकेशन वजह से दया का विनाश हो जाता है, और सिर्फ एक ही पैर पर जो है वो धर्म जो अभी खड़ा था। और तब जब परीक्षित महाराज कली को मारने के लिए जब तैयार हो जाते हैं तब कली देखता है कि उसकी परीक्षित महाराज जैसे शुद्ध भक्त के सामने उसकी कुछ भी चलने वाली नहीं है। और तुरंत समय का प्रभाव देखकर विषम परिस्थिति देखकर कली तुरंत ही वहां पर शरणागति स्वीकार कर लेता है और कहता है मुझे माफ करो, कृपा करके मुझे मत मारिए क्योंकि यह समय अब मेरा समय आ रहा है और इसी की वजह से मुझे यहाँ रहना बहुत ही जरूरी है। परीक्षित महाराज कहते हैं लेकिन जब तक मैं हूं आप मेरे राज्य में नहीं रह सकते। परीक्षित महाराज को वो गिड़गिड़ाता है, कुछ भी करके मुझे थोड़ा सा तो मुझे आप दीजिए, कहीं पर रहने के लिए चीज दीजिए। तो फिर परीक्षित महाराज कहते हैं जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां पर अवैध संघ होता हो, जहां पर शराब की का सेवन किया जाता हो, जहां पर प्राणियों को काट कर खाया जाता हो, इस चीजों पर आप कहीं पर भी आप रह नहीं सकते। कली गिड़गिड़ाते कहता है लेकिन आपके राज्य में तो कोई भी ऐसा नहीं करता है तो फिर मैं कहां रहूंगा। आखिर में परीक्षित महाराज कहते हैं ठीक है आप ऐसी जगह पर हो जहां पर सोना होता है। अशिला गोपाल वहां पर लिखते हैं जहां सोना होता है वहां पर फॉल्सिटी झूठापन वहां पर इंटॉक्सिकेशन प्रभाव शराब का प्रभाव लस्ट काम ईर्ष्या एनवी और एनमिटी दुश्मनावट ये पांच चीजें जहां पर भी सोने का ज्यादा संग्रह होता है वहां पर ये पांच चीजें दिखाई देती है और इसी की वजह से कली जो है वो इस जगह पर रहता है। और इस तरह से परीक्षित महाराज धर्म के जो बाकी के जो तीन पैर है उसे सम्मिलित करते हैं धर्म के पास, गाय माता को जितना हो सके उतना उन्हें शांति और आनंद प्रदान देने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर परीक्षित महाराज को एक श्रीमद् भागवतम में जो चैप्टर ये डिस्क्रिप्शन है, उनको परीक्षित महाराज को एक बैलेंस्ड माइंडेड राजा के रूप में, एक राजा जो है उसका जो राज्य के राजा के रूप में उसकी जो मानसिकता है वो एक सक्षम होनी चाहिए। उसे यहां वहां वो अगर कोई और राजा होता तो शायद कली को मार भी डाल सकता था, लेकिन एक बैलेंस्ड जो राजा है जो परिस्थिति में उसके गुण और उसे अवगुण दोनों को समझ सकता है। श्री प्रभुपाद एक जगह पर लिखते हैं, अ डिवोटी इज सपोज टू बी अ सिंपल पर्सन बट अ डिवोटी शुड बी ऑलवेज इंटेलिजेंट इनफ टू डिस्क्रिमिनेट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। द्रौपदी जब अश्वत्थामा जब आते हैं तो द्रौपदी एक एक सीधी सादी स्त्री के रूप में उसे मान देने के लिए खड़ी हो जाती है, सम्मान देने के लिए, जिसने अभी अपने बेटे को काट दिया है, एक दुष्यंत के तहत जैसे वहां पर शिला प्रभु लेते हैं। भक्त को सादा होना, सरलता होनी चाहिए भक्त के हृदय में, लेकिन सच्चाई और झूठ के बीच में फर्क पाने की बुद्धि भी एक भक्त के बीच में होनी चाहिए। और यहां पर परीक्षित महाराज एक राजा के रूप में एक बैलेंस माइंड यहां पर हमें पता चल रहा है कि किस प्रकार से गुण और अवगुण के बीच में देखकर सबसे अच्छा क्या है ये समझना। वहां पर कली के दुर्गुण तो अनेकों 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 अगणित दुर्गुण है, लेकिन उस दुर्गुणों के पल्लों के सामने कली के गुणों के पल्लों को देखा जाए तो एक तो पहले के समय में अच्छी चीजों को करने के लिए कार्य करना पड़ता था तो उसके गुण मिलते थे, लेकिन कलयुग में अच्छी चीजों करने के लिए सिर्फ सोचने से भी उसके उस कार्य के गुण हमें मिल जाते हैं। आगे के समय में, आगे के युगों में कोई बुरा चीज अगर मन में भी सोचे तो उसका सारा जो अच्छा जो है कार्य नष्ट हो जाता है, लेकिन कली के युग में बुराई करने के लिए सिर्फ सोचने से बुराई नहीं होती, बुराई करने के लिए कार्य करना पड़ता है। उसी प्रकार से सर्वोत्तम जो गुण है, कली का जो सर्वोत्तम गुण है वह है भगवान श्री कृष्ण के सिर्फ नाम लेने से, सिर्फ नाम लेने से सर्वोत्तम आध्यात्मिक जो गुण है वो व्यक्ति पा सकता है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में अलग अलग प्रकार की जो युग धर्म होते हैं, कभी कभी यज्ञ है, कभी ध्यान है, कभी मंदिर में पूजा अर्चना है, लेकिन कलयुग के समय में जहां पर बुद्धि उतनी नहीं है, जीवन उतना नहीं है, ऐश्वर्य उतना नहीं है, शुद्धता उतनी नहीं है, तो भगवान का नाम मात्र लेने से इस कलयुग में हम जीवन की सर्वोत्तम आध्यात्मिक परिस्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर आखिर में कलयुग का एक दूसरा एक सर्वोत्तम गुण है कि कलयुग में श्रीमद् भागवतम को सुनने से मात्र शुद्ध भक्तों के बीच में रहकर, श्रीमद् भागवतम के सुनने से मात्र श्री कृष्ण जो है वह हृदय में बंधित हो जाते हैं। ये इतना बड़ा गुण है कलयुग का। कलयुग के अंधकारमय युग में श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण खुद एक तो नाम के द्वारा, दूसरे श्रीमद् भागवतम के द्वारा एक सूर्योदय के समान उस कलयुग में अंधकार को दूर करने के लिए श्री कृष्ण नाम, श्रीमद् भागवतम और शुद्ध भक्तों के द्वारा इस कलयुग के अंधकार को दूर करने के लिए आए हैं। समय जाता है आगे और फिर थोड़े समय में एक बार परीक्षित महाराज जंगल में गए हैं शिकार करने के लिए, बहुत ही त्रस्त है, प्यास लगी है, भूख लगी है, और जब ये शमीक ऋषि के आश्रम में जाते हैं तब वहां पर शमीक ऋषि ध्यान में है, शमीक ऋषि को ध्यान में देखते हुए परीक्षित महाराज जो भूख और प्यास से पीड़ित हैं वे थोड़े से क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन एक प्रश्न हो सकता है कि जो व्यक्ति अभी श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए 7 दिन तक खा नहीं सकता है, पी नहीं सकता है, वो व्यक्ति इतने थोड़े देर में भूख और तुषार से पीड़ित कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति जिसे कृष्ण ने खुद अभी जन्म के समय उनकी रक्षा की थी, वो व्यक्ति को ऐसी क्षुधा कैसे उसे पीड़ित कर सकती है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम का अवतरण अभी बहुत ही जल्द होने वाला था और इसी के वजह से स्पॉटलेस, अभी हमने देखा कि परीक्षित महाराज एक उनके कैरेक्टर पे एक भी छोटा सा भी दाग नहीं था और इसी की वजह से भगवान श्री कृष्ण परीक्षित महाराज को चुनते हैं कि इस लीला में परीक्षित महाराज को जो है प्यास और भूख से वे थोड़े पीड़ित थे और बाजू में एक मेहमान को जिस प्रकार से स्वागत करना चाहिए, अभी थोड़े समय पहले हमने चर्चा की कैसे एक मेहमान की स्वागत होनी चाहिए, लेकिन एक मेहमान को जिस प्रकार से स्वागत होना चाहिए, एक राजा का जिस प्रकार से स्वागत होना चाहिए, इस प्रकार से स्वागत न होने की वजह से परीक्षित महाराज जो है वो स्ट्रेस में थे। गोविंद प्रभु कहते हैं कि दादाजी के डिस्ट्रेस के वजह से भगवद गीता का अवतरण हुआ। भगवद गीता का अवतरण युद्ध के पहले अर्जुन जी का, अर्जुन का जो डिस्ट्रेस था उसकी वजह से ये आने वाले समय के लिए भगवद गीता का, और पोते के डिस्ट्रेस के वजह से श्रीमद् भागवत का अवतरण हुआ। तो इस प्रकार से जो जो सांप जो है मरे हुए सांप को परीक्षित महाराज क्षण कुशी के गले में डाल देते हैं, वापस आते हैं। वापस आते ही परीक्षित महाराज सोचते हैं क्या किया मैंने, ये क्या हो गया मैंने। उनको खुद को भी पता नहीं चलता कि ये मैं कर सकता हूं, ये कैसे हो गया मुझसे। और फिर एक बुद्धिशाली एक चारित्र्यवान राजा के रूप में ये समझ गए थे कि अब मेरे लिए कुछ अघटित होने का समझ पर आने की वे तैयारी की। और उसी समय श्रृंगी नाम का जो श्रमिक ऋषि का जो बेटा होता है, जो एक ब्राह्मण होता है, लेकिन एक ब्राह्मण होते हुए भी उसे उसकी क्रोध के पर उसका वश नहीं था। श्रीमद्भागवत लिखते हैं कि जो राक्षस युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो राक्षस और जो राक्षसी वृत्ति के व्यक्ति जो है युद्ध में जो मारे नहीं गए और जो मारे गए उस भगवान के दर्शन करते करते मारे गए, सारू की मुक्ति उनको मिल गई, लेकिन जो व्यक्ति का मृत्यु नहीं हुआ था उन व्यक्तियों को, उन राक्षसी मानसिकता के व्यक्तियों को कृष्ण ने एक और अपॉर्चुनिटी दी। कृपण वत्सल कृष्ण एक और उनको चांस देते हैं ब्राह्मण कुल में जन्म देकर कि आप उनसे अब आध्यात्मिक प्रगति करो। और इसी की वजह से श्रृंगी जो है वही व्यक्ति वाली व्यक्ति एक भगवान की कृपण वत्सलता के रूप में वो ब्राह्मण के घर में एक श्रमिक ऋषि के घर में जन्म होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो अपनी जो ईर्ष्या युक्त जो मानसिकता था वो उसे इस ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद भी वो उस मानसिकता को छोड़ नहीं पाया और इसी की वजह से वह जो है श्रृंगी के हृदय में अभिमान था, उसके हृदय में मन में उसके ईर्ष्या थी और इसी के वजह से वह जो है पूरे क्रोध के साथ परीक्षित महाराज के लिए अनेकों अनेक हीन शब्दों का वो प्रॉपर करता है और फिर वो उसे श्राप देता है कि अब उसे 7 दिन के अंदर उसे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही उसके पिता श्रमिक ऋषि को पता चल जाता है कि अपने बेटे ने ऐसा एक घिनौना अपराध कर दिया है कि एक राजा को, एक वैष्णव राजा को कभी भी श्राप नहीं दे सकते, क्योंकि सारे समाज के लिए, सारे पृथ्वी के लिए एक वैष्णव राजा का होना बहुत ही जरूरी है। क्रोध ये ऐसी चीज है जो क्रोध सच्चाई और बुराई जो है वो उसका जो है एंगल जो है वो उसका कोई भी भान नहीं रखता है। उसी प्रकार से जब शमी पुत्र उन्हीं को पता चलता है कि उसके बेटे ने इस प्रकार से अपराध किया है, तुरंत ही वे भगवान से गिर गिरा कर प्रार्थना करते हैं कि अपने बेटे के लिए जो भी ये जो हो चुका है उसे उसे माफ कर दे। लेकिन परीक्षित महाराज की क्या परिस्थिति है, वे डर गए? एक शुद्ध वैष्णव जो है वो अपमानित होता है, स्थगित होता है, शापित होता है, उपेक्षित होता है, या तो जान से मारे जाने का उसके ऊपर भय होता है, फिर भी वैष्णव के हृदय में बदला लेने का विचार नहीं होता है, उनके हृदय में हमेशा सहिष्णुता होती है। तिरस्कृता विप्रलब्धा शक्ता क्षिप्ता हता अति नास्य तत् प्रतिकूलन्ति तत् भक्ता प्रभो परि। एक वैष्णव का गुण होता है जो कितनी ही कठिन, एक सम्राट के लिए ये परिस्थिति बहुत ही छोटी थी। एक सम्राट के रूप में अगर वो चाहते तो ऐसी परिस्थिति निर्माण कर सकते थे जिसमें इस शाप से उनको असर ना मिले, लेकिन एक भक्त का जो जीवन होता है, श्री प्रभुपाद बहुत सुंदर से श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक को बार बार दोहराते हैं, अति सुंदर ये श्लोक है। तथे अनुकंपां सुमिक्षमाणं भुञ्जान एवामृतं विपाकम्। तो इस श्लोक में श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि शुद्ध भक्त होता है जो व्यक्ति अपने दुख कर्मों के, अपने दुष्कर्मों के कारण उसके जो फल है उसे धैर्य पूर्वक जो सहता है और हृदय से, वाणी से और शरीर से इस दुखी परिस्थिति में नमस्कार करते हुए भगवान की कृपा समझता है, वह व्यक्ति जो है भगवान की अहैतिक कृपा का अधिकारी बन जाता है। प्रभुपाद उस ट्रांसलेशन श्लोक में लिखते हैं कि एक पिता, एक बेटे को अपने पिता का जो ऐश्वर्य है वो पाने के लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ उसे जीवित रहना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता। कितना सीधा सरल है। उसी तरह से एक भक्त को भगवान की कृपा पाने के लिए सिर्फ एक ही चीज करना पड़ता, भक्ति में कोई भी परिस्थिति हो, भक्ति में अपना भक्ति की जो साधना है उसे कंटिन्यू करना है। और एक दिन अविश्वास हृदय में नहीं रखना चाहिए, जो भी कठिनाई, जो भी मुश्किली जीवन में आए उसे हृदय पूर्वक उसे आनंद से उसे ले लेना चाहिए। और जब हम इस प्रकार से परिस्थिति को लेते हैं तब एक दिन जो है भगवान की कृपा जरूर से वो जो भक्त है वो अधिकारी हो जाता है। इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने तुरंत तैयारी कर ली कि 7 दिन में अब मृत्यु आने वाला है। देखो एक एस्ट्रोलॉजर्स ने उनको कहा था कि एक बड़ा ब्रेव, एक फियरलेस, जिसके मन में कोई डर नहीं है, ऐसी यह व्यक्ति होगी। और यहाँ पर पूर्वाद होता है कि जैसे ही उनको पता चल गया कि 7 दिन में मृत्यु आने वाली है तो तुरंत ही उन्होंने लेट द कैलेमिटी कम नाउ, इस दुख को, इस बड़े जो मृत्यु का जो समय है उसे आ जाने दीजिए। और फिर इस ये परिस्थिति ऐसी आई है परीक्षित महाराज के लिए ताकि मैं ऐसे खराब कर्म वापस नहीं करूं। और फिर परीक्षित महाराज जो है उस परिस्थिति को तैयार करने के लिए, पाने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार करते हैं। श्रीमद् भागवतम के अलग अलग पन्नों में आगे बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि परीक्षित महाराज अपने ऐश्वर्य के, अपने दादा के जैसे, जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज पूरी तरह से डिटैच थे इस ऐश्वर्य से, परीक्षित महाराज का अभी भी उनका शरीर सौष्ठव काफी सुंदर था, वे अभी भी युवान थे, सारा ऐश्वर्य उनके पास था, घर में उनके सुंदर पत्नी थी। और ऐसा ऐश्वर्य होते हुए जैसे जिस प्रकार से एक पंछी अपने घोंसले को छोड़कर उड़ने को तैयार हो जाता है, उसी प्रकार से परीक्षित महाराज अपना युद्ध, अपना युवान, अपनी शक्ति, अपना राज्य का सारा ऐश्वर्य, कोई भी दुश्मन नहीं ऐसा राज्य, ये सारी चीज को छोड़कर वे यमुना नदी के किनारे श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते हुए हमारे जीवन में भी हम बहुत कुछ इस प्रसंग के साथ सीख सकते हैं। एक तो कभी भी पाप करना करने से पहले हमें 1000 बार सोचना चाहिए, हमेशा कृष्ण का नाम, कृष्ण के गुणगान हमारे जीवन में हमें रखना चाहिए। और कुछ ऐसा हो भी जाए तो हृदय में परीक्षित महाराज के जैसे ट्रू रिपेंटेंस, हृदय में हमेशा रिपेंटेंस होना चाहिए, पश्चाताप हृदय में, ये पाप कर्म का सबसे बड़ा एंटीडोट है। पाप की जगह उसे तो बदल नहीं सकते, लेकिन उसकी एक ही दवा है कि हृदय पूर्वक हृदय में हमें पश्चाताप लेना है। और जब ये पश्चाताप होता है तब भगवान जो कृष्ण है वो ड्योली उस भक्त का जो है वो पूरा चार्ज भगवान को देते हैं। भागवतम की जब कथा जब चलने वाले थी तब अनेकों अनेक मुनि राजर्षि ब्रह्मर्षि वहां पर आए, एक महान राजा का जैसे भीष्म पितामह के लिए जब वे छोड़कर जब जा रहे थे तब जिस प्रकार से अनेकों अनेक महान व्यक्ति वहां पर आए थे, उसी प्रकार से शुद्ध गोस्वामी और परीक्षित महाराज के जब वार्तालाप जब भागवतम के ऊपर चलना शुरू हुआ था तब अनेक अनेक महान महान आत्माएं महान महान राजर्षि वहां पर आए। और फिर परीक्षित महाराज जो है सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं शुद्ध गोस्वामी से, एक व्यक्ति जिसका शरीर अब छोड़ने की तैयारी है उसका कर्तव्य क्या है? और फिर जो अति सुंदर श्रीमद् भागवतम का जो विवरण है ये हमारे लिए एक शुद्ध भक्त कठिन परिस्थिति का सामना करता है ताकि आने वाले समाज की आध्यात्मिक स्वस्थता के लिए। आप हरिदास ठाकुर के जीवन से लीजिए, जीसस क्राइस्ट को देखिए, भीष्म पितामह देखिए, परीक्षित महाराज, अनेकों अनेक वैष्णव परंपरा में संत देखिए, एक ही कार्यशाली एक ही मुख्य उद्देश्य है कि आने वाले समाज की आध्यात्मिक उन्नति और स्वस्थता उनके जीवन का हमेशा मुख्य अंग रहा है। और आखिर में सारे भागवतों के बाद में जो बोलते हैं ना उसके क्रीम परीक्षित महाराज क्या कहते हैं, अगर मैं वापस जन्म लेता हूं तो कृपया मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरणों के साथ पूर्ण तरह से लगाव हो, मुझे वैष्णवों का संग हो और इस भौतिक जगत के हर जीव के साथ मित्रता पूर्ण हो। ये जो भाव जो है वो परीक्षित महाराज हमें सिखा रहे हैं कि कैसा भाव हमें हमारे जीवन में भी कल्टीवेट। भाव एक दिन में नहीं होता है, जैसे पौधों को पानी दिया जाता है पौधों को खाद देना पड़ता है, हृदय में आध्यात्मिक भावों का भी हमें संचित करना पड़ता है, उन्हें धीरे 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 वो डेवलप होता है। तो भीष्म पितामह और परीक्षित महाराज के जीवन के द्वारा हम देख सकते हैं कि एक राजा एक वीर के रूप में सारी एक्टिविटी ये शुद्ध भक्त करते थे। शुद्ध भक्त बनने के लिए घर छोड़कर अगर हमारे पास शक्यता नहीं है तो जाने की जरूरत नहीं है। सारे कर्तव्य सारे कार्य जो हम करते हैं वो भगवान की सेवा, गुरु महाराज के आश्रय वैष्णव के आश्रयों के नीचे रहकर हर कार्य जो हम कर रहे हैं वो उस सेवा भाव से अगर हम करते हैं उनके आदेश के अनुसार पितामह की जैसे जैसे देख सकते हैं कि अंत में पूरा जीवन जो है वो हमारी परीक्षा है, परीक्षा की तैयारी है और मृत्यु जो है परीक्षा है। जिस प्रकार से जीवन हम परीक्षा की तैयारी के रूप में करेंगे उसी प्रकार से हम हमारे परीक्षा में हम रिजल्ट पा सकेंगे। और जब हम श्री प्रभुपाद के दिए हुए दिखाए हुए रास्तों के अनुसार भगवान का नाम स्मरण चार नियमों का पालन श्रीमद् भागवतम का पठन वैष्णवों की सेवा तुलसी महाराज की सेवा आध्यात्मिक धाम में जाकर यात्रा और इस प्रकार से सबसे इस तरह से भक्तों के समूह में रहकर नम्रता पूर्वक एक दूसरे को जब हम मदद करते हुए जब भक्ति में आगे बढ़ने की अगर हम प्रयत्न करते हैं तो जरूर से जरूर से जिस प्रकार से विश्व पितामह के समय मृत्यु के समय कृष्ण उनके सामने रहे, उसी प्रकार से वैष्णव आचार्य कहते हैं कृष्ण ने यह वचन दिया है कि जब मेरे भक्त की मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब मैं वचन देता हूं कि उसके सामने मैं आ जाऊंगा। और सबसे ज्यादा जरूरी किसको व्यक्ति को कब होती है, वह है मृत्यु के समय। और मृत्यु के समय भगवान ने जैसे प्रॉमिस किया है उसी तरह से भगवान खुद एक भक्त के मृत्यु के समय आते हैं। कैसे? वैष्णव के नामों के मुख के द्वारा, भगवान के नाम स्मरण के द्वारा भगवान एक वचन जो दिया है, ये वचन के मुताबिक भगवान वैष्णव के नाम के द्वारा मृत्यु के समय आते हैं। और जब वैष्णव जो सारे जीवन भर हमारे साथ रहे हैं वही वैष्णव जब हमारा अंत समय आता है तो उनके द्वारा भगवान हमारे बीच रहते हैं। ये श्रील प्रभुपाद की हमारे ऊपर बहुत ही असीम कृपा है। यही हमारे बीच श्रील प्रभुपाद और उनके जो फॉलोअर्स हैं वे हमारे बीच है, ये हमारे ऊपर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा है। आइए हम सब मिलके इस कृपा के अधिकारी बने। अधिकारी कैसे बनते हैं? जो इस कृपा को हृदय पूर्वक हमारे जीवन हमारे हृदय में ग्रेटफुलनेस के साथ हम जब अपना है तब हम कृपा के अधिकारी बन सकते हैं। शिला प्रभुपाद की जय।